हरे हरे कृष्ण। आप सब श्रोताओं का स्वागत है दूसरे दिन श्रीमद्भागवत के सत्संग में। श्री हाशीजा परिवार, लजपत राय जी, विनोद जी और परिवार ने नए साल के आगमन में शुभकामनाएं सबके लिए करते हुए विश्व देश जाति सबके कल्याण के लिए भगवान श्री कृष्ण के वांग्मय रूप श्रीमद् भागवत का आवाहन किया है। भाग्यशाली आप हैं जिनको श्रवण का अवसर दिया है, इस दास को सेवा का अवसर दिया है। भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है श्रीमद् भागवत, सब शास्त्रों का सार है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य के ऊपर कल चर्चा हुई और पहला स्कंद श्रीमद् भागवत के पहले 6 अध्यायों के ऊपर कल हमने श्रवण किया। भागवत के पहले स्कंद में सुनने वाले और कथा कहने वालों के बीच में बातचीत है, संवाद। पहले 3 अध्यायों में सनक आदि ऋषि और सूत गोस्वामी का संवाद है। 4, 5 और 6 अध्यायों में व्यास देव और नारद जी का संवाद है। शेष 13 अध्यायों में भागवत के सुनने का मुख्य अधिकारी श्रोता महाराज परीक्षित, उसकी महानता का वर्णन है, उसकी योग्यता का वर्णन है, उसके अधिकार का वर्णन है, उसको उसके ऊपर भगवान का कितना अनुग्रह है, कितनी उसकी भक्ति है, उसका वर्णन है। तो आइए आज हम महाराज परीक्षित, उसके भागवत के श्रवण में जो महानता है और भागवत का वक्ता, त्याग और वैराग्य की मूर्ति और भगवत प्रेम का पुंज श्रीमान संत श्रोमणि वृक्ष चूड़ामणि सुखदेव गोस्वामी महाराज, उनके दर्शन करेंगे आज। परीक्षित महाराज की महानता बताने के लिए श्रीमद् भागवत में परीक्षित के मातृकुल और पितृकुल का वर्णन है। 3 पीढ़ियां परीक्षित की माताएं भगवान की मान भक्त हैं। आश्चर्य लगेगा कि श्रीमद् भागवत में पहले महान भक्तों के उल्लेख में श्रेणी में 3 नारियों का वर्णन है, 3 स्त्रियों का वर्णन है, 3 महान माताओं का वर्णन है। 3 पीढ़ियों की भक्ति जब पक्की है तब परीक्षित महाराज भागवत के अवतार के लिए भगवान ने चुना है। वैसे देवकी और वसुदेव वो भी 3 पूरे जन्म उनके भगवान के भक्ति में लगे थे तब भगवान श्री कृष्ण का प्रकट्य हुआ था। तो आइए पहले परीक्षित महाराज की माता उत्तरा का दर्शन करेंगे। 7वें अध्याय पहले स्कंद में उत्तरा का दर्शन है। उत्तरा महाराज विराट की बेटी है। उत्तरा छोटी अवस्था में विधवा हो गई है। उसका पति अभिमन्यु 16 साल का नवयुवक महाभारत के युद्ध में बलिदान देकर वीर गति को प्राप्त हो चुका। उत्तरा तो निश्चित रूप से पति के साथ सती होने को तैयार थी, लेकिन उत्तरा के उदर में, गर्भ में भक्ति का अंकुर पांडव कुल का अंश था, उसके रक्षा के लिए उत्तरा जीवित रही थी। आज परिस्थिति ऐसी हुई है, भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध के संपूर्ण होने के बाद हस्तनापुर से द्वारका जाने के लिए रथ के ऊपर आरूढ़ होने जा रहे हैं। रथ के ऊपर चढ़ के अपने धाम द्वारका जाने को तैयार हैं। मंगल स्वस्ति वाचन पंडित करने ब्राह्मण कर रहे हैं। विदाई के लिए सब लोग चारों ओर से खड़े हैं। वैसे नारियां ऊपर बालकनियों में खड़ी हैं। अचानक सफेद साड़ी में उतरा दौड़ती हुई रथ की तरफ भाग रही है। सबको आश्चर्य हुआ कि उतरा विधवा विदाई के समय अपशुकन करके कहां जा रही है। लेकिन उत्तरा ने किसी की ओर नहीं देखा, न पांडवों के पास शरण जाकर कुछ विनती की, न किसी और की ओर देखा। सीधा कृष्ण के ऊपर दोनों हाथ करके कहा, हे कृष्ण महायोगिन पाई माम हे कृष्ण हे महायोगी मेरी रक्षा करो मेरी रक्षा करो। और उत्तरा कहने लगी, मेरे को मरने का भय नहीं है, मेरे को शरीर रखने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन कैसे भी ये आपका भक्त, आपके भक्ति का अंश, ये पांडवों का जो अंकुर मेरे उदर में है, इसको कोई अग्नि की तरह बाण जलाने आ रहा है, इसकी रक्षा करो। श्री कृष्ण ने उत्तरा की ओर देखा, भगवान तो अंतर्यामी है, हृदय में सबके विराजते हैं। श्री कृष्ण समझ गए, हाँ, द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र पांडव कुल के अंतिम अंकुर को नाश करने के लिए रवाना किया है, जिसकी रक्षा राम करे, जिसकी रक्षा भगवान श्री कृष्ण करे, उनको ब्रह्मास्त्र कैसे मार सकता है। आज भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त के ऊपर अनुग्रह करने के लिए इतने अधीर हो गए, हृदय में विराजमान है, वहां से नीचे उतर के उदर में चले गए, और परीक्षित की रक्षा के लिए भगवान हृदय में जब विराजमान होते हैं तो चार हाथों के विष्णु रूप में होते हैं। चार हाथों का भगवान का विष्णु स्वरूप है, नारायण स्वरूप है, और हाथ में एक में गदा है, बहुत तेज चला रहे हैं और चक्कर भी चला रहे हैं, और परीक्षित की रक्षा करने का भार भगवान ने अपने ऊपर उठा लिया है, और परीक्षित को भगवान ने पुनः जीवित कर दिया। ब्रह्मास्त्र अमोघ है, अमोघ का मतलब जहां जाता है उसको निश्चित रूप से नाश करता है, लेकिन आज भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र से, अपने चक्र से और गदा से रक्षा की है परीक्षित की। जैसे महाभारत में ऐसे लिखा है कि ब्रह्मास्त्र से परीक्षित का शरीर शांत हो चुका था, लेकिन श्री कृष्ण ने घोषणा की कि महाभारत के युद्ध में अगर मैंने किसी का पक्षपात नहीं किया है, कौरवों और पांडवों का, सबके साथ समान मेरा बर्ताव रहा है, तो ये बालक जीवित हो जाएगा। और परीक्षित में पुनः प्राणों का संचार हुआ और परीक्षित जीवित हो गए। तो ये उत्तरा मां भगवान श्री कृष्ण की शरणागत है, परीक्षित की दादी सुभद्रा और द्रौपदी का दर्शन भी बहुत विलक्षण है। ये दोनों ऐसी नारियां हैं महाभारत में जिसके पुत्र मारे गए हैं, और भगवान जिन सुभद्रा का तो सगा भाई है और द्रौपदी का बहुत अनुग्रह करने वाला सखा है। द्रौपदी कृष्ण को अपना सखा मानती है और द्रौपदी का एक नाम भी कृष्णा है, वो कृष्ण को अपना सर्वस्व मानती है। पांच पुत्र द्रौपदी के भी मारे गए सोए हुए, एक ही पुत्र सुभद्रा का भी मारा गया, लेकिन दोनों ने कभी कृष्ण को उलाहना नहीं दिया। शांति से कृष्ण की लीला का दर्शन कर रही थी। भक्त वो नहीं है जो सुख में केवल भगवान की भक्ति करे, कष्ट आने के ऊपर भी भगवान के ऊपर श्रद्धा और विश्वास और अधिक बढ़ जाता है। वैसे संसार में तो भक्तों का ऐसा दर्शन मिलता है, जब काम बन जाता है तो भगवान के गुण गाते हैं, और कोई संकट आ गया तो भगवान भी छूटा और मंदिर भी छूटा और गालियां भी देना शुरू कर देते हैं कि इतना सारा भगवान के लिए किया, आज भगवान ने हमारा कुछ भी नहीं किया। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि दूसरी महाभारी लड़ाई के बाद बहुत से लोग नास्तिक बन गए, सबने कहा था हमारे पति लड़ने गए हैं वो वापस आए, अब लड़ाई में जो गए हैं वो मरेंगे वापस कैसे आएंगे, वो मर गए तो भगवान के ऊपर लोगों का विश्वास ही उठ गया। लेकिन भक्त हर परिस्थिति में सुख में और दुख में भगवान का आश्रय नहीं छोड़ता है। द्रौपदी का और भी विलक्षण दर्शन और सातवें अध्याय में है। युद्ध के 18वें दिन पे, 18 दिन का महाभारत का युद्ध था, और पहला सेनापति भीष्म पितामह था और आखिरी सेनापति अश्वत्थामा था। जैसे कृतवर्मा सेनापति था और वो भी जीवित बचा था, लेकिन आज अश्वत्थामा दुर्योधन को खुश करने के लिए रात को सोए हुए द्रौपदी के पांच पुत्र और द्रौपदी का एक भाई, बड़ा भाई दृष्टद्युम्न, इन दोनों को रात को इन पांच द्रौपदी के पुत्र और एक द्रौपदी के भाई को सोए हुए को मार दिया। सुबह द्रौपदी ने मरा हुआ देखा, मारने तो आया था पांच पांडवों को, लेकिन श्री कृष्ण पांच पांडवों को समन्तक पंचक कुरुक्षेत्र में, वो स्थान है जहां सरस्वती बहा करती थी, वहां तो उस दिन कृष्ण पांडवों को तो वहां ले गए थे सुरक्षित, पांडवों की जगह पे पांच पांडवों के पुत्रों को मारा। द्रौपदी विलाप करने लगी कि युद्ध भूमि में मर जाते अगर मेरे बेटे तो वीर गति को प्राप्त होते, लेकिन आज सोए हुए को मारा गया है, कहीं अधोगति न हो जाए। द्रौपदी को विलाप करते हुए देखा, अर्जुन कहते हैं पांचाली जिसने इनका वध किया है उनको मैं लाके आपके सामने सर काटूंगा, उसके खून से इनका तर्पण करना। आश्वासन देकर द्रौपदी को अर्जुन रथ के ऊपर आरूढ़ हुआ। आज कृष्ण अभी तक सारथी का काम कर ही रहे थे, रथ अश्वत्थामा के पीछे भगाया, अश्वत्थामा का रथ आगे चलता हुआ, घोड़ा थक गया आगे नहीं चल पाया रथ, अश्वत्थामा हताश होकर अंतिम अस्त्र अपना ब्रह्म अस्त्र रवाना किया अर्जुन की ओर। अर्जुन का भयभीत होकर कृष्ण को कहते, कृष्ण कृष्ण मेरी रक्षा करो, ये मेरे सामने क्या अस्त्र आ रहा है, मैं इससे अपनी रक्षा नहीं कर सकता। कृष्ण कहते हैं अर्जुन आप ब्रह्म अस्त्र का आवाहन करो, इस अस्त्र को अपने अस्त्र से रोको। अर्जुन ने ब्रह्म अस्त्र का आवाहन किया। आजकल का जो आइटम बम न्यूक्लियर बम है ये तो फिर भी कुछ भौतिक पदार्थों से बनता है, लेकिन वैदिक काल के अस्त्र शस्त्र कहते थे जो हाथ से चलाए जाएं, जैसे तलवार है, भाला है, तीर है, और अस्त्र कहते हैं जो मंत्रों से आवाहन करके आते हैं। एक अस्त्र होते हैं, एक शस्त्र होते हैं, तो ये अस्त्र ब्रह्म अस्त्र है, शस्त्र नहीं। ब्रह्मास्त्र है जो मंत्र से अभिमंत्रित होता है और आइटम बम से ज्यादा भारी उसका प्रभाव है, लेकिन उसका कमाल ये है आइटम बम जिसके ऊपर गिराओगे तो वो पूरे देश को नाश करेगा, वो बेईमान को ईमानदार दोनों को मार देगा। लेकिन ब्रह्मास्त्र केवल जिसके ऊपर मारा जाए उसी को ही लगेगा और पास वाले को भी कुछ नहीं करेगा। तो कितना सिलेक्टिव और कितना कितना निर्णायक हमारे पास वैदिक काल में ये अस्त्र शस्त्रों का जो है वो निर्माण था वो अब सब लुप्त हो गया है। अब तो ये लोहे के बंदूक उठा के ऐसे थोड़ी पहले लड़ते थे जैसे आजकल सेनापति बैठा होता है कंप्यूटर के ऊपर और कहता है आप आगे जाओ आक्रमण करो। अरे सेनापति अपना ध्वज लेके आगे हाथी के ऊपर चढ़ के और रथ के ऊपर चढ़ के पहला तीर अपनी छाती पे खाने को तैयार होता था, सैनिक पीछे खड़े होते थे। यहाँ तो गरीब सैनिक मारे जाते हैं, सेनापति घर में सोया होता है। तो ये युद्ध की पद्धति जो है ये कायरों की युद्ध की पद्धति है, वीरों की युद्ध की पद्धति नहीं है। वीर छाती के ऊपर घास खाया करते थे और तब अपने आप को महान माना करते थे। ये तो वीरों का देश था, वो सब बातें खत्म हो गई है। आज अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए, बहुत चारों ओर से इतनी अग्नि इतना गर्मी का प्रभाव होने लगा कि व्यास देव ने कहा अपना अपना अस्त्र वापस ले लो, सृष्टि का नाश हो जाएगा। अश्वत्थामा कहता है मुझे तो अस्त्र वापस लेना आता ही नहीं। व्यास कहता है नहीं आता तो चलाया क्यों। कृष्ण ने अर्जुन को विनती की, दोनों अस्त्र वापस अर्जुन ने कर लिए, अश्वत्थामा को बांधा और बांधकर रस्सी से जब लाया गया तो द्रौपदी का दर्शन कीजिए कैसी उधार और कैसी दयालु ये माता है जिसके पांच पुत्र और एक भाई मारा गया है। अश्वत्थामा को बांधा देख के कहती है इसको खोल दो, मुझे मुझे इसको खोलो इसको छोड़ो, ये गुरु का पुत्र है ये ब्राह्मण है। एक मां को बेटे के मरने का कितना दुख होता है इसका अनुभव मैं कर चुकी हूं। मेरे पांच पांच पुत्र मारे गए, मैं नहीं चाहती हूं कि ये दुख इसकी मां कृपी होगी। इसको साधु बोलते हैं संत बोलते हैं जो अपने दुख से दूसरे के दुख का अनुभव करता है। जो दुख मुझे देख लगता है वो दूसरे को दुख मुझे कभी नहीं देना चाहिए। और इससे आगे भी द्रौपदी कहती है इसका पिता आपका गुरु द्रोणाचार्य भी वीर गति को प्राप्त हो चुका है। मेरे तो आप पांच पति अभी तक जीवित हो लेकिन इसका कृति का तो पति भी जीवित नहीं है, इसलिए आप इसको छोड़ दो इसको मत मारो। कितनी करुणा की मूर्ति है ये द्रौपदी। इसको भगवान अपनी सखी बनाए और उसकी रक्षा करने के लिए साड़ी बन के लिपट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, इतनी करुणामयी है ये द्रौपदी, इतनी दयामयी। आज भीम कहता है इसको तो मारना ही चाहिए अश्वत्थामा को। युधिष्ठिर कहता है नहीं द्रौपदी ठीक कह रही है। श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन तुम द्रौपदी की भी बात को मान लो, भीम को भी नाराज मत करो। अर्जुन समझ गया और श्री कृष्ण ने संकेत दिया, ब्राह्मण का वध करना शास्त्र में निषेध है, नहीं मारना चाहिए ब्राह्मण को, लेकिन आतिताई को मारना भी धर्म है। अश्वत्थामा ब्राह्मण है नहीं मारो, लेकिन आतिताई है रात को सोए हुए को मारा है इसलिए इसको दंड भी देना चाहिए। तो क्या करना चाहिए अश्वत्थामा के, अश्वत्थामा आज भी चिरजीवी है, आज भी जीवित है। जो चिरजीवी कुछ लोग हैं हनुमान आदि उनमें एक अश्वत्थामा है, वो अभी तक जिंदा है इस धरती के ऊपर। आगे अश्वत्थामा दूसरे कल्प में विशेष उसका कोई पद है, सप्तऋषियों में ऋषि या कुछ ऐसे बनेगा उसका वर्णन है। अभी भी कुछ लोग कहते हैं ब्रज में भ्रमण करता रहता है, एक वन है विशेष उसमें, कभी जाते हैं गुजरात में तो एक पर्वत है अपना, तीन पर्वत है उसमें से ये है जामनगर, जामनगर जहां गिरनार, गिरनार पर्वत के ऊपर वहां भ्रमण करता रहता है अश्वस्थामा। अश्वस्थामा के पास एक, अश्वस्थामा के सर में एक मणि थी, वो मणि उसका शक्ति और प्रकाश था। भगवान श्री कृष्ण के कहने के ऊपर अर्जुन ने उस मणि को निकाल दिया और घाव अभी तक अश्वस्थामा के मस्तक के ऊपर अभी तक वो घाव ऐसे भरा नहीं है, और उसके बाल काट दिए और उसको कुरूप कर दिया और वहां से अश्वस्थामा को रवाना कर दिया। अश्वस्थामा वहां से जाते हुए भी बदला, प्रतिशोध लेने के लिए पांच ब्रह्मास्त्र और चलाए पांचों पांडवों को मारने के लिए। उनको आते हुए देखकर कृष्ण ने कहा, आप लोग झुक जाओ ब्रह्मास्त्र के सामने। चार पांडव तो कृष्ण की आज्ञा मानी झुक गए। भीम तो खड़ा हुआ, बोला झुकेगा नहीं, ये गर्दन कटेगा। झुकना भीम ने कहा मैं सीखा नहीं हूं। कृष्ण भीम के आगे खड़े हो गए, ब्रह्मास्त्र को अपने ऊपर धारण कर लिया। उन पांच ब्रह्मास्त्रों से रक्षा की भगवान श्री कृष्ण ने अश्वस्थामा के पांच पांडवों की। इसलिए अब महान महादादी कुंती का वर्णन आता है भागवत में आठवें अध्याय में कि तीन पीढ़ियों की माताएं जब भगवान की भक्ति करते हैं तब परीक्षित जैसा पुत्र पैदा होता है, और जिसके ऊपर भागवत जैसा नित्य निर्वहनशील जो जो वेदों का सार है वो अवतरित होता है। तो इससे शिक्षा ये मिलनी चाहिए कि हमारे घरों के अंदर परंपराएं ऐसी होनी चाहिए कि तीन तीन पीढ़ियों तक भगवान की भक्ति होगी, तब हमारा संतान अच्छा और आगे भविष्य में भक्तिशील बनेगा। एक पीढ़ी का ये काम नहीं है, भागवत ऐसे ठीक दिखा रही है। तीन तीन पीढ़ियों की माताओं की भक्ति कठी हुई। आज द्रौपदी का वर्णन बड़ा अद्भुत है। द्रौपदी की प्रार्थना को पहला स्थान श्रीमद् भागवत में दिया है। कई प्रार्थना श्रीमद् भागवत में तो बहुत सारी प्रार्थना है। मानव तो मानव है लेकिन पशु की भी प्रार्थना है, गजेंद्र की प्रार्थना हाथी की भी है, और लेकिन सबसे पहले एक नारी की प्रार्थना को स्थान दिया है व्यास देव ने श्रीमद् भागवत में, और ये प्रार्थना कुंती महारानी की है। कब कर रही है कुंती महारानी प्रार्थना? जब श्री कृष्ण जाने को तैयार है हस्तिनापुर के लिए, हस्तिनापुर छोड़ के वापस द्वारका जाने को तैयार है, सब विदाई के लिए खड़े हैं, लेकिन कुंती उस वक्त प्रार्थना करती है भगवान श्री कृष्ण को। कुंती कहती है, आप तो एक अभिनेता की तरह वृष्णि वंश में और पांडव वंश के संबंधी बने हुए हमारे बीच में ऐसे रिश्तेदार बन के चल रहे हो, आपको समझना मुश्किल है। आप तो, मैं तो स्त्री हूं समझ नहीं सकती हूं, लेकिन ऋषि भी आप परम पुरुष भगवान है ये समझ नहीं पाएंगे। लेकिन मैं उस दिन दिवाली के दिन मैं गोकुल में थी, मैं अपनी माता जी के घर मैं उस दिन आई हुई थी गोकुल में, यशोदा के घर रोहिणी के पास। दिवाली का दिन था, आप श्री कृष्ण छोटे पांच वर्ष के बच्चे थे और जिससे भय स्वयं भयभीत होता है आप उस गोपी से भयभीत हुए थे, और उस माँ यशोदा ने आपने बांध दिया था। वो दिन भी मैंने आपके उस लीला का देखा था। ऐसे साक्षात भगवान होते हुए भक्तों के प्रेम से बंध जाते हैं, आपको पहचानना मेरे बस की बात नहीं है। और ऐसे कुंती आगे प्रार्थना करती हुई कहती है, और ये जब कुंती कहती है तो आंखों में आंसू है कुंती के, कहती है कि श्री कृष्ण अभी आप हमारे को ये साम्राज्य पूरा देके जा रहे हो, हस्तिनापुर का सिंहासन देके जा रहे हो, और हस्तिनापुर का सिंहासन हमको दिया है और आप जा रहे हो। इससे तो वो दुख अच्छे थे, वो संकट अच्छा था, वो लाक्षाग्रह अच्छा था, उन संकटों में हम आपको याद करते थे और आपको याद करने के ऊपर आप आ जाते थे। आज सुख दे के हमको आप छोड़ के जा रहे हैं, इन सुख से वो दुख अच्छे थे। आज तक भगवान से ऐसी प्रार्थना किसी ने नहीं की है विलक्षण, जैसी ये मां कुंती कर रही है। विपत्ति संतो, ये विपत्तियां बार बार आए, क्योंकि दुख आता है तो भगवान याद आता है और भगवान याद आता है तो भगवान आ जाता है, दर्शन हो जाते हैं। आज सुख है और राज मिला है और आप जा रहे हो, ऐसे राज मुझे स्वीकार नहीं है। दुख दारू सुख रोग भया, ये कुंती महारानी की प्रार्थना के दो शब्दों को बहुत सुंदर भाव में गुरु ग्रंथ साहब में इन दो शब्दों में लिखा है, दुख दारू सुख रोग भया। दुख दवाई है, सुख रोग है। ये जो शब्द है ये कुंती महारानी की प्रार्थना के शब्द हैं। और कुंती अंत में कहती है ये सब संबंध मेरे, जो भी संबंध है इन सब को मैं, इन सब से मैं मुक्त हो जाऊं और मेरा मन कृष्ण आप में लगे, ऐसी कृपा मेरे ऊपर करो, आपको मैं भूल न सकूं। तो ये तीन पीढ़ियां महान नारियों की भागवत में पहले स्कंद में परीक्षित की महानता का दर्शन कराती है। अब परीक्षित के पितृ कुल को देखिए, परीक्षित का पितामह पांडु नव पांडव है, ये कुरु वंश का भी नहीं है, पुरु वंश का भी नहीं है, ये तो वेदव्यास का पुत्र है। महाराज पांडु वेदव्यास का पुत्र है, सत्यवती के कहने के ऊपर वेदव्यास ने काशी नरेश की पुत्रियां जो भीष्म पिता में लेकर आए थे, और दो भाइयों में एक तो क्षय रोग से विचित्र वीर का देहांत हो गया था और चित्रंगद उसकी पत्नी को भी कोई संतान नहीं था, व्यास देव के आवाहन किया, व्यास देव अनुष्ठान से उठकर आए और सत्यवती माता जी की आज्ञा को पालन करने के लिए व्यास देव ने पांडु के रूप में पहला पुत्र प्रदान किया इस वंश में। तब से पांडु वंश चला, पहले से कुरु वंश चल रहा था, उससे पहले पुरु वंश था, फिर कुरु महाराज से कुरु वंश हुआ जिसके नाम से कुरुक्षेत्र अभी तक यहाँ है। इसी क्षेत्र में महाराज कुरु ने सोने का हल चलाया था और भगवान से वरदान मांगा था कि यहाँ प्राण त्यागने वाला सदगति उसको प्राप्त हो। तो पांडु महाराज पांडु व्यास पुत्र है और पांचू पांडव देवताओं के अंश हैं। धर्मराज युधिष्ठर धर्मराज है, भीम वायु का अंश है, अर्जुन इंद्र का अंश है, नकुल और सहदेव के अंश से, सॉरी अश्वनी कुमारों के अंश से, नकुल और सहदेव की उत्पत्ति है। तो ये पांडव भी साधारण कोई संसारी व्यक्ति नहीं है और इनमें से भी विशेष रूप से अर्जुन तो भगवान का नित्य सखा है, नर नारायण के रूप में पहले भगवान के साथ में रहा है, आज भी अर्जुन भगवान का सखा है, नित्य सखा है। तो ये पितृ कुल परीक्षित महाराज का कोई साधारण नहीं। और फिर अर्जुन का बेटा अभिमन्यु भगवान श्री कृष्ण की सगी बहन सुभद्रा का बेटा है और अभिमन्यु को भक्ति करने की जरूरत नहीं थी, अभिमन्यु के ऊपर भगवान श्री कृष्ण का वृद्ध हस्त था, द्वारका के अंदर कृष्ण के संरक्षण में रहा था और 16 साल का ऐसा वीर था जिसने जन्म से पहले मां के गर्भ में चक्रव्यूह तोड़ना सीखा था और अकेले कोई नहीं जब चक्रव्यूह तोड़ सकता था पांडवों में, अर्जुन कहीं दूर युद्ध में चला गया था तो ये 16 साल का अकेला बालक चक्रव्यूह में 6-6 महारथियों से लड़ा था। उस अभिमन्यु का पुत्र है ये परीक्षित, ये उसका पितृ कुल है। और पितृ कुल में यहां पांडवों की बात क्या करते हैं, पर पितामह इसके बाद नवे इस अध्याय में भीष्म पितामह का दर्शन कराते हैं कि परीक्षित के तो भगवत प्राप्ति में कोई संदेह नहीं रह जाता है। जब भीष्म पितामह केवल भगवान के साक्षात दर्शन करते हुए संसार से चले हैं तो परीक्षित के पितृकुल में भीष्म पितामह का दर्शन नवे स्कंद में होता है और कथा ऐसे शुरू होती है, महाराज युधिष्ठिर युद्ध समाप्त होने के बाद बहुत दुखी हो गए, मेरे कारण इस राजगद्दी के ऊपर मुझे बैठाया है इसके लिए इतना नरसंहार हुआ है, कितने लोग मारे गए हैं, कितनी स्त्रियां विधवा हुई है, कितनी माताएं निरपुत्र हो गई। अब आप कहते हो कि यज्ञ करो और यज्ञ करने से पाप धुल जाएंगे, शराब के बर्तन को शराब से धोने से साफ नहीं हो सकता। युधिष्ठिर महाराज बहुत दुख कर रहे हैं, राज करने को तैयार नहीं है। आश्चर्य यह है कि युद्ध शुरू होने से पहले ऐसा ही दुख अर्जुन कर रहा था कि इस युद्ध से सब मर जाएंगे, कुल परंपराएं नाश हो जाएंगी, धर्म का लोप हो जाएगा, ये युद्ध कुल घाती होगा। युद्ध से पहले अर्जुन ये देख रहा था, युद्ध के बाद युधिष्ठिर महाराज रो रहे थे। युद्ध से पहले अर्जुन को तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया और अर्जुन तो मोह से मुक्त हो गया, लेकिन आज श्री कृष्ण स्वयं युधिष्ठिर को शिक्षा दे रहे हैं, व्यास देव समझाने का प्रयास कर रहे हैं, धौम्य ऋषि समझाने का प्रयास कर रहे हैं, कृपा आचार्य समझाने का प्रयास कर रहे हैं, युधिष्ठिर किसी की बात नहीं मान रहे। क्यों? इसलिए कि श्री कृष्ण की इच्छा है कि युधिष्ठिर को शिक्षा भीष्म पितामह के द्वारा दिलाई जाए। आज भीष्म पितामह को अमर बनाना है। वैसे भी भीष्म पितामह कोई साधारण संसार का व्यक्ति तो है नहीं, मां गंगा का बेटा है, एक वसु है, किसी कारण से धरती के ऊपर आया है और भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त है और 12 महाजनों में एक महाजन है जो धर्म को जानते हैं, धर्मराज कहते हैं उनमें से एक भीष्म कपिलो व्यासकी प्रहलादो जनको, ये सब महाजन है, उनमें एक भीष्म पितामह है। आज युधिष्ठिर महाराज को शिक्षा दिलानी है, भीष्म को दर्शन देना है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर में एकांत में कहीं बैठे हैं तो युधिष्ठिर को आश्चर्य लगा, श्री कृष्ण दुनिया आपका ध्यान करती है, आप किसका ध्यान कर रहे हैं? श्री कृष्ण कहते हैं इस वक्त गंगा पुत्र भीष्म मेरा ध्यान कर रहा है, इसलिए मैं उसका ध्यान कर रहा और वो उत्तरायण का इंतजार कर रहा है, प्राण त्यागने की तैयारी कर रहा है, उसके पास चलो अभी तैयारी करो। युधिष्ठिर पांडव तैयार हुए, रथ तैयार हुए, श्री कृष्ण का आज रथ अर्जुन चला रहा है। युद्ध भूमि में तो कृष्ण ने अर्जुन का रथ चलाया था, भीष्म के पास जाते हुए कृष्ण को बिठाया रथ के ऊपर, अर्जुन चला रहा है, पांडव रवाने हुए, पांडव कुरुक्षेत्र की ओर हस्तिनापुर से रवाने हुए, ये समाचार ब्रह्मांड में पहुंच गया, तपलोक में, महरलोक में, जनलोक में जहां ऋषि रहते हैं वहां ये समाचार पहुंचा, भीष्म पितामह प्राण त्यागने जा रहे हैं, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान है वो आज अपनी इच्छा से प्राण त्यागने जा रहे हैं और श्री कृष्ण भगवान साक्षात उनके सामने उपस्थित होंगे, निश्चित रूप से कोई अद्भुत दर्शन है, चलो सब चले। और उस वक्त ब्रह्मांड से ऋषि आने शुरू हो गए, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ, मेधावी, कर्तु, पुलह, पुलस्त, जो भी ऋषि है जिनका बड़ा लंबा नाम है, इन सब ऋषियों ने आया, भीष्म पितामह ने सबका स्वागत किया यथावत, जैसे तब दूर से पांडवों को आते हुए देखा, और पांडवों में महाराज युधिष्ठिर के सर के ऊपर हस्तिनापुर का राज मुगट देखा और भीष्म पितामह आंखों से आंसू बहाते हुए बहुत खुशी में प्रफुल्लित और उल्लास के साथ कहते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर, अब मैं शांति से प्राण त्याग सकता हूं। मैंने मेरे पिता को वचन दिया था, जब तक हस्तिनापुर का सिंहासन सुरक्षित नहीं होगा तब तक मैं उसकी रक्षा करूंगा। आज हस्तिनापुर का सिंहासन धर्मराज युधिष्ठिर आपकी सुरक्षा में है और आप श्री कृष्ण की सुरक्षा में है, इसलिए आज मैं प्राण त्यागने की तैयारी कर सकता हूं। लेकिन इतना कहने के बाद एकदम का कृष्ण कहां है? अर्जुन दिखेगा तो कृष्ण साथ में दिखे। सखा किसको बोलते हैं? सखा का मतलब एक दिखे तो एक का नाम लो तो दूसरा का दर्शन हो जाए। अर्जुन कहने से कृष्ण दिखेगा, सुधामा कहोगे तो कृष्ण दिखेगा। सखा का मतलब एक का नाम लो तो दूसरा पास में खड़ा हुआ दिखाई देगा। सखा का मतलब जिसकी ख्याति उसके समान है, एक का नाम लेने से दूसरा अपने आप याद आ जाता है। कृष्ण को देखा पीछे से, कृष्ण का दर्शन हुआ और कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर महाराज को आप शिक्षा दीजिए राज करने की। और उस वक्त भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से एक प्रश्न पूछा कि युधिष्ठिर, आप तो धर्मराज हैं, आपने तो कभी कोई अपराध किया नहीं, पाप किया नहीं, कोई आपका शत्रु तो है नहीं। और फिर श्री कृष्ण साक्षात भगवान आपके संबंधी हैं, आप आपके घर में रहते हैं, आपके सखा भी हैं, आपके मित्र भी हैं, आपके सारथी भी हैं, फिर भी आपके ऊपर इतने संकट आए, इतना कष्ट आपने सहा, इसका क्या कारण हो सकता है? जो धर्म के ऊपर चले और भगवान जिसके सहायक हो फिर भी संसार में कष्ट भोगे, ये कैसे संभव हो सकता है? भीष्म पितामह ये कहने के बाद कहते हैं, स्वयं उत्तर देते हैं, युधिष्ठिर, ये काल है, काल बड़ा बलवान है, काल के चक्र को कोई नहीं रोक सकता और काल भगवान का ही स्वरूप है। कालोऽस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो। अर्जुन जब पूछता है विश्व रूप में भगवद गीता में अर्जुन कृष्ण को, अब कौन है मैं नहीं जान सकता, तब भगवान कहते मैं काल हूं। ये काल है, समय बहुत बलवान होता है, कभी दिन होती है कभी रात होती है, ये भी तो समय है ना। कभी तारा राज की रानी थी फिर धोबियानी बनी, तारा किसकी पत्नी? हरिश्चंद्र की, राज की रानी। कभी द्रौपदी पांडवों की पटरानी थी, आज विराट नगर में सैंदरी बनके और रानी के बाल बना रही है नौकरानी की तरह। ये सब समय का समय बहुत बलवान होता है, सब समय सब एक जैसा कभी नहीं रहता है, समय बदलता है, समय कभी ऊपर किसी को उठाता है कभी नीचे किसी को गिराता है और समय के सामने कोई नहीं ठहर सकता। और फिर भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को राज धर्म की शिक्षा दी और नारी धर्म अनेक जो भी ये पूरा महाभारत में भीष्म पर्व में विशेष रूप से एक पूरी शिक्षाओं का विभाग है जिसमें महाराज युधिष्ठिर को जो शिक्षाएं दी हैं भीष्म पितामह ने। और इस शिक्षाएं देते हुए जब उत्तरायण का समय आया और एग्जैक्टली टाइम जब पूरा हो गया तब श्री कृष्ण भगवान की ओर देखते हुए भीष्म पितामह हाथ जोड़ के कहते हैं, सब जगहों से अपने ध्यान को हटा दिया, ऐसा वीर जो इस धरती के ऊपर बहुत बड़ा नीतिज्ञ रहा, बहुत बड़ा नेता रहा, बहुत बड़ा जो पॉलिटिशियन रहा, बहुत बड़ा जो है सेनापति रहा, एक इतने बड़े युद्ध लड़ा, आज उन सब चीजों को थोड़ी देर के लिए दिमाग से बिल्कुल निकाल दिया और ऐसे श्री कृष्ण की ओर हाथ जोड़ के कहते हैं, तमाल वर्णम, चतुर्भुजम तमाल वर्णम, आप चतुर्भुज रूप, आपका जो रंग है सांवला सा है, आप यहां मेरे ऊपर कृपा करने के लिए अंत समय मुझे दर्शन देने के लिए आए हैं। प्रतीक्षताम, आप प्रतीक्षा करेंगे, जब तक मैं प्राण नहीं त्यागूंगा तब तक आप प्रतीक्षा करेंगे, मेरे सामने खड़े रहेंगे, लेकिन कैसे, मुस्कुराते हुए, इंतजार में भी मुस्कुराएंगे, क्योंकि आप भक्तों से बहुत स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। जैसे मैं आप अर्जुन के सखा हो, अर्जुन आपका भक्त है, और उस नाते से आप मेरे ऊपर ये कृपा करने के लिए आए हो। सब प्रार्थना के जितने भी 12-13 श्लोक हैं भीष्म पितामह के, उसमें प्रायः हर दूसरे श्लोक में अर्जुन का नाम लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि भगवान भगवान के भक्तों के साथ जब उसका नाम लेते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं। भीष्म पितामह फिर प्रार्थना में कहते हैं कि मेरी बुद्धि आज मैं आपके चरणों में अर्पण करता हूं, और भीष्म पितामह को याद आता है कि वैसे लोग कहते हैं कि धनुष बाण चला के पांडवों ने कौरवों को मारा, कौरवों ने पांडवों को मारा, लेकिन मैंने ये देखा था कि ये सिर्फ आपकी नजर थी कि सब मारे जा रहे थे, ये तो आप की नजर से सब मारे गए, लेकिन उसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है जिन्होंने का भी प्राण त्यागा सबने आपके दर्शन करते हुए यहां से गए, इसलिए सबका उद्धार हो गया। यहां जो मरे हैं वो बड़े भाग्यशाली है कि आपका दर्शन करते हुए, मरना तो सबको पड़ता है इस दुनिया में, मरना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भगवान के सामने मरना भाग्यशाली को प्राप्त होता। फिर भीष्म पितामह वीर था, सेनापति था, आज उसको याद आता है अर्जुन श्री कृष्ण का वीर रूप, श्री कृष्ण के वीर रूप का बहुत बड़ी गाथाएं हैं, आज भीष्म को वो रूप याद आता है जब भीष्म कह रहा है श्री कृष्ण को, मेरे वचन की रक्षा करने के लिए आपने अपना वचन तोड़ दिया, मेरे वचन की रक्षा करने के लिए आपने अपना वचन तोड़ दिया, अर्जुन की रक्षा करने के लिए बड़ा परिश्रम करके युद्ध भूमि में आप सारथी के स्थान से कूद के नीचे उतरे, उठाया एक रथ का पहिया टूटे हुए का हाथ में चक्कर की जगह पे, पसीने से, परिश्रम के पसीने से आपका सारा चेहरा भीगा हुआ था, आपके गुंगरालू बालों में घोरू की टापू से उड़ी हुई धूल लगी हुई थी, और आप एक शेर जैसे हाथी के ऊपर झपकता है ऐसे मेरे ऊपर आ रहे थे, वो दर्शन में आपका करके अभी धन्य हो गया, मेरे को युद्ध भूमि में आपका वो रूप दिखाई दे रहा है। युद्ध ही तुर्गरजो विधुम्बर विश्व, आपका मेरे तीरों से सारा कवच टूटा हुआ था, और ये कहने के बाद कुमालों में कौन सा वचन भीष्म ने किया था जिसकी रक्षा भगवान ने की, और कौन सा वचन कृष्ण का था जो उसने तोड़ दिया। कृष्ण का वचन तो ये था कि मैं युद्ध भूमि में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन आज अस्त्र शस्त्र तो नहीं उठाया, लेकिन किसी रथ का एक पहिया उठा ही लिया हाथ में चक्कर की जगह पे। भीष्म का कौन सा वचन था जो टूट गया, जिसकी रक्षा की भगवान ने। एक दिन दुर्योधन ने जाके भीष्म को कहा, पितामह आप हमारे सेनापति हो, मेरा मित्र कर्ण होता तो ऐसी हालत नहीं होती, आए दिन गाजर मूली की तरह पांडव मेरी सेना का नाश कर रहे हैं, आप इतने एक भी पांडव को अभी तक नहीं मारा। भीष्म पितामह क्षत्रिय है, क्षत्रिय का खून खोलता है, कोई चुनौती देता है तो, और क्षत्रिय धर्म इतना विलक्षण भी है और इतना कठोर है कि अपने और पराये में उसमें भाई भाई के साथ युद्ध होता, आज भीष्म पिता मैंने 5 बाण निकाले ऐसे हाथ में लिए, बोला ये बाण है मेरे हाथ में, कल पांडवों का इससे संहार समझो। और ये भीष्म की प्रतिज्ञा है। अब दुर्योधन के मन में संदेह हुआ, ऐसे तो नहीं है भीष्म पिता मैं इस बाणों से इसे कोई लेके चला जाए, अभी मानो कि इसके पास कोई लेने आ गया तो पांडवों को तो दे ही देगा, इसलिए बाबा पिता मैं ये बाण मेरे को दो, मैं सुरक्षित रखूंगा, कल सुबह आपको दे दूंगा। अब सिक्योरिटी के लिए बाण दुर्योधन लेके चला गया। सोए हुए अर्जुन को कृष्ण ने जगाया रात को 12 बजे समझो। अर्जुन उठने को तैयार नहीं है, कृष्ण बोला उठो, बोले मैं थक गया हूं, बोले तुम्हें चिंता नहीं, बोले चिंता मैं क्यों करूं, चिंता आप करो, मैं तो सारा दिन युद्ध करके थक गया हूं। बोला उठो, क्या बात क्या है ये वसुदेव कृष्ण, क्या बात है? बोला तुम्हें याद है दुर्योधन ने एक वचन तुमको दिया था? अर्जुन नींद में बोलता दुर्योधन ने, दुर्योधन का नाम क्यों ले रहे हो, उसको तो मारना है। बोला दुर्योधन ने एक वचन दिया था, आपको याद है? अब अर्जुन उठ के कहते हाँ मुझे याद आ रहा है, वचन दिया था एक मेरे को दुर्योधन ने। बोला जाओ आज उस वचन को जाके मांग लो। बोला क्या मांग लो? बोला उसको बोलो 5 बाण मेरे को दे दो जो तुम्हारे पास भीष्म पिता मैंने रखे। कृष्ण के इस शिक्षा के अनुसार अर्जुन दुर्योधन के शिविर में गया। आधी रात को दुर्योधन जागा, बोला पार्थ कैसे आए, आओ बैठो भाई, क्या मांगते हो, मांगो, छोटे हो, अधिकार है तेरे को मांगने का। बोला मेरा एक आपने एक मेरे को वचन दिया था, आपको याद है? दुर्योधन बोलता है वचन हां, वो वचन जब आप काम में वन में वनवास भोग रहे थे और हम सब लोग वहां पिकनिक पार्टी मनाने आए थे और दुर्योधन को मालूम था कि अर्जुन का मित्र एक गंधर्व है, चित्रसेन, उसने दुर्योधन को बंदी बना लिया, कर्ण उसकी रक्षा नहीं कर पाया, अकेला दुर्योधन बंदी हो गया। ये समाचार महाराज युधिष्ठिर को मिला। उस वक्त महाराज युधिष्ठिर ने एक बहुत बड़ी अद्भुत शिक्षा दी है, वो आप सबको और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महाराज युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन अपने घर में हम 5 पांडव हैं, वो 100 कौरव हैं। अपने घर के अंदर हम अलग अलग हैं, हमारा कोई वैर है विरोध है तो अपने घर का है, लेकिन जब दूसरे किसी के साथ हमारा सामना हो तब हम 105 साथ होंगे। इसलिए आज दूसरे किसी ने कौरवों के राजकुमार दुर्योधन को बंदी बनाया है, उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। बहुत बड़ी उत्तम शिक्षा है कि घर का झगड़ा बाहर पब्लिक में दिखाने की जरूरत नहीं है, पब्लिक के लिए हम सब साथ हैं, हम 105 हैं, पब्लिक के लिए, दुनिया के लिए हम 105 हैं, अपने घर में हमारा झगड़ा है तो क्या हुआ। भीम ने कहा नहीं 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 तो इनको तो मारना ही चाहिए, लेकिन अर्जुन को भेजा युधिष्ठिर ने, अर्जुन गया, वो तो मित्र था गंधर्व चित्र, तो युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन तुमने मेरे को आज यहां से मुक्त किया है, मांगो क्या चाहिए, राज चाहिए हस्तनापुर का, खत्म कर दो ये वनवास। बोला मुझे कुछ चाहिए नहीं, जब जरूरत होगा तब मांग लूंगा। आज अर्जुन कहता है वो वचन आपने दिया था, बोला क्या चाहिए बोलो, युद्ध खत्म करें, हस्तनापुर का राज दे दो। दुर्योधन कह रहा है, अर्जुन कहता है वो तो नहीं, उसके लिए तो लड़ाई चलेगी, वो तो हम बाहुबल से लेंगे, लेकिन मैं आज वचन में आपसे वो 5 बाण मांगने आया हूं जो भीष्म पिता मैंने आपके पास रखे हैं। दुर्योधन ने उठा के ऐसे अर्जुन के हाथ में दे दिए। अर्जुन बाण लेके आया श्री कृष्ण तो प्रसन्न हो गया। सुबह भीष्म ने कहा दुर्योधन बाण लाओ, दुर्योधन कहता है वो तो रहा था, अर्जुन ले गया। अर्जुन को कैसे पता लगा वो कैसे बाण आपसे ले गया, ये कृष्ण का काम है। और उस वक्त भीष्म ने कहा आज मैं गंगा पुत्र भीष्म ये प्रतिज्ञा करता हूं, या तो कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी, नहीं तो अर्जुन को मरा हुआ जाना। आज ये भीष्म ने प्रतिज्ञा कर दी और ऐसा युद्ध भीषण किया कि अर्जुन की तो जान खतरे में पड़ गई। और तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि आज भीष्म के वचन को रक्षा करेंगे, हम अपना वचन तोड़ देते। भगवान ने वचन तोड़ दिया तो क्या फर्क पड़ा, भगवान की भगवत गीता के ऊपर फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन भीष्म का वचन टूट गया तो भक्त के ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा कि भक्त भगवान का और उसका कहा हुआ वचन कभी टूट जाए, ये संभव नहीं। प्रहलाद कहता है खंभे के अंदर भगवान है तो भगवान खंभे से ही निकलेंगे, क्योंकि भक्त का वचन पूरा करना है। भृत्य, हाँ भृत्य कहते हैं सेवक को, भृत्य के वचन को सत्य करने के अलावा और कोई भगवान के पास इससे अधिक कोई उनको पसंद का काम है ही नहीं। तो भीष्म पितामह अब प्रार्थना करते हैं, एक प्रार्थना में आज गोपियों की याद आती है, कृष्ण और गोपियों का जो ब्रज की लीला है वो भीष्म की प्रार्थना में एक ये श्लोक बहुत बड़ा सुंदर है कि उन गोपियों ने आपको जब नहीं पाया तो आपका अभिनय करने लगी, वो तो पगली हो गई आपके प्रेम में। वो अब पहले अर्जुन की बात की, फिर गोपियों की बात की, इन सब भक्तों से प्रार्थना करते, उनकी कृपा प्राप्त करके भीष्म अंतिम समय ऐसे लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण को ये भी कहा कि मेरे को वो दिन भी याद है जब हस्तिनापुर में युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में आपकी अगर पूजा हुई थी, मैंने वो दिन भी देखा था। और आज ये कहते हुए भीष्म पितामह अंतिम सांस ले रहे हैं, खुली आंखों से भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके, और भीष्म पितामह यहाँ संसार से शरीर त्याग गए। इसलिए इस भाव को आजकल भी भक्त प्रेम से गाते हैं, इतनी तो करना कृपा जब प्राण तन से निकले, गंगा जी का तट हो जमुना का बंसी बट हो सांवरा निकट हो, इतनी तो करना कृपा। ये केवल कृपा आज तक अगर किसी के ऊपर हुई है तो भीष्म पितामह के ऊपर हुई है, जिसके सामने भगवान श्री कृष्ण, अंत समय तो सबको आता है लेकिन सबके सामने गोविंद खड़े नहीं होते। लेकिन फिर भी उदाहरण के रूप से प्रभुपाद जी जब 77 में वृंदावन के अंदर अंतिम समय शरीर त्याग रहे थे तो बहुत से भक्तों ने अनुभव किया था जैसे भीष्म पितामह चारों ओर ऋषियों के बीच में कृष्ण का दर्शन करते हुए प्राण त्यागे थे। आज ये आधुनिक युग का विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार करने वाला आचार्य भक्तों के बीच में हरि कीर्तन भगवान को और भगवान का नाम अभिन्न है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, भगवान श्री कृष्ण कलयुग में अपने नाम के रूप में अवतरित हैं और मधुर कीर्तन के बीच में श्रीमद् भागवत का अनुवाद करते हुए और साक्षात भगवान श्री कृष्ण के नाम का श्रवण करते हुए संसार से गए थे। तो ऐसे भक्तों का आज भी ये कामना रहती है, ये अभिलाषा रहती है कि अंत समय जब हो तो कोई चार भक्त बैठ के हमारे पास हरी कथा और हरी कीर्तन करें तो वो हमारा जीवन सफल हो। ये शिक्षा भीष्म के यहाँ दर्शन से होती है। और इसके बाद ये दिखाया गया है कि भगवान श्री कृष्ण इसके बाद द्वारका विदा होके हस्तिनापुर से द्वारका जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण की जो विदाई होती है वो भी अद्भुत है। जो हस्तिनापुर की नारियां भगवान श्री कृष्ण की महिमा गाती है वो वेद के वाचने वाले पंडितों को पंडितों की प्रार्थनाएं उसके सामने फीकी पड़ जाती, वो स्त्रियों की प्रार्थनाएं ऊपर खड़ी हुई अटारियों में श्री कृष्ण को जाते हुए देख के जो प्रार्थना कर रही हैं हस्तिनापुर की नारियां, बड़ी विलक्षण है। पंडित स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, अर्जुन तो भगवान के साथ सात्यकी रथ के ऊपर चढ़े हुए, कोई चमर झुला रहा है, कोई ऊपर भगवान की छाता वो भी हीरे मोतियों से जड़ा हुआ सोने के दंड वाला लेके खड़ा है। भगवान की विदाई के समय युधिष्ठिर साथ जाने को तैयार है, सेना साथ दी है। भगवान ने कहा आप राज को संभालो। जहां जहां से भगवान गए हैं, इस पंचाल देश पंजाब से भगवान आगे गुजरे हैं, हस्तिनापुर तो अभी भी मेरठ के पास है, ये दिल्ली इंद्रप्रस्थ है। यहाँ दिल्ली में जहाँ आप रह रहे हो, यहाँ भगवान श्री कृष्ण के चरण कई बार घूमे हैं। ये गुड़गांव शिक्षा का स्थान था द्रोणाचार्य का, जहाँ पांडवों को शिक्षा देते थे। गुरु गांव है जो गुड़गांव हो गया। ये गुरु गांव यहाँ सर्दियों में यहाँ और गर्मियों में ऊपर स्थान है, जहाँ देहरादून के पास वहाँ ये शिक्षा होती थी। और मसूरी के नीचे वो वारणावर्त था, जहाँ अभी भी लाख मिलती है, जहाँ पांडवों को जलाने का प्रयास किया गया था। दूसरी तरफ मसूरी के ये पूरा क्षेत्र पांडवों का और कौरवों की राजधानी का स्थान है, और कृष्ण कई बार यहाँ आए हैं। इसलिए यहाँ भगवान की कथा कीर्तन हो तो कोई अचंभे की बात नहीं है कि ये क्षेत्र भगवान के चरणों के चिन्ह से सुशोभित रहा है, और इसने भगवान के बहुत लीलाओं का दर्शन किया है अद्भुत। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ से फिर कुल जंगल से होते हुए, राजस्थान से होते हुए, मध्य प्रदेश से होते हुए, जहाँ जहाँ सायंकाल होता था भगवान श्री कृष्ण अपने यात्रा को रोक देते थे। संध्या काल की संध्या वंदना होती थी, लोग सारे वहाँ के आके भगवान का स्वागत करते थे, भेंट सामग्री लाते थे, भगवान का दर्शन करते थे। और फिर भगवान गुजरात से होके सौराष्ट्र द्वारका के पास पहुँचे। द्वारका में पहुँचने से पहले भगवान ने अपना शंख बजाया, शंख की ध्वनि को सुनकर पूरे द्वारकावासी आनंदित हो गए। और फिर वहाँ भगवान के स्वागत का अध्याय, भगवान का स्वागत करने के लिए बलराम जी के साथ सारे ही यदुवंशी आए भगवान, और गांव के सब लोग, शहर के सब लोग, हर एक व्यक्ति भागता हुआ भगवान के स्वागत के लिए आया। और अनर्थ देश कहते हैं, द्वारका का दूसरा नाम है अनर्थ देश, पहले उसको अनर्थ कहते हैं, द्वारका नाम तो गोपियों ने दिया। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका चले गए तो यहाँ बहुत बड़ी अद्भुत चिंता होने लगी। मथुरा में रहते थे तो समाचार तो आता रहता था, अब गोपियों को बहुत बड़ा दुख होने लगा कि हम भगवान को देखेंगे कैसे। भगवान ने योग माया से सब गोपियों को एक बहुत बड़ा महल बनाया, और उस महल में द्वारका में रात रात में योग माया के द्वारा वहाँ ला के रखा। सुबह उठी गोपियां तो दरवाजा मिल नहीं रहा है, पूछ रही है द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है। तो उस जगह का नाम द्वारका हो गया। ये द्वारका जो नाम है ये गोपियों ने उस स्थान को दिया है जिसको पहले अनर्थ देश बोलते थे। ये 100 योजन, 100 योजन का मतलब 1600 किलो, 1600, एक योजन में 8 कोस, 16 मील, 16 मील का मतलब 1600 मील का टुकड़ा है अनर्थ देश। ये जो द्वारका इतना छोटा नहीं है, 1600 मील का टुकड़ा है। और ये वैकुंठ से नीचे उतरा है महाराज अनर्थ के, महाराज अनर्थ सूर्यवंश के एक महाराज हुए हैं, जिसके पास राज करने के लिए जगह नहीं थी। उसके पिता ने कहा कि मैं राजा हूँ, उसने कहा राजा तो केवल भगवान है, हम तो उसके प्रतिनिधि हैं। तो उसने कहा तुम्हारा भगवान से राज मांग लो। तो उसने भगवान की आराधना की, और भगवान ने कहा और तो धरती कहीं है नहीं, धरती तो आपके पिता का राज है, लेकिन आपकी प्रार्थना के लिए मैं वैकुंठ से ये 1600 मील का टुकड़ा नीचे उतारता हूँ। उसका नाम हो गया अनर्थ देश। तो वहाँ अनर्थ देश को द्वार का नाम गोपियों ने दिया। फिर गोपियों वहाँ एक बहुत सुंदर तालाब भगवान ने तैयार किया, जहाँ भगवान को गोपियों ने स्नान कराया, और भगवान के शरीर के ऊपर जो ब्रह्मा जी के द्वारा लगा हुआ अंगराग था वो सब धुला, उससे गोपीचंद बना, गोपियों का उनका अभिषेक किया। वो गोपीचंद आज भी पूरे भक्त उस तिलक लगाते हैं, वो उस गोपी तालाब से आता है जिसमें भगवान के संग में गोपियों ने विहार किया था। तो ये द्वारका नाम गोपियों ने दिया है द्वारका को। भगवान द्वारका पहुंचे, द्वारका में सबने स्वागत किया। घर में पहुंचते ही रानियां तो बाहर नहीं निकलती थी, और रानियां तो भगवान की हम दसम स्कंद में बताएंगे 16108 अपने पुत्रों को भेजा। भगवान ने सबको गले लगाया और रानियां कहती है आप समय समय के ऊपर मथुरा जाते हैं, हस्तिनापुर जाते हैं, आपकी जुदाई हमको बहुत जो है वो दुख देती है। इससे ये लगता है कि भगवान समय समय के ऊपर यहाँ आया करते थे हस्तिनापुर और मथुरा आदि में। तो यहाँ दो अध्यायों के बाद परीक्षित महाराज, ये भी परीक्षित की महिमा है कि उस घर में भगवान आया करते थे और जाया करते थे जिस घर में परीक्षित की का जन्म हुआ है। और परीक्षित का नाम भी, जन्म का नाम विष्णु राज था, जिसकी विष्णु रक्षा करें, लेकिन उसका नाम परीक्षित इसलिए रखा कि वो जिसको देखता था उसी को देखता ही रहता था, और ये परीक्षा लेने का प्रयास करता था कि मेरी माँ के गर्भ में रक्षा किसने की थी, ये तो नहीं है। फिर आंखें ऐसी करता था, ये नहीं है। तीन यज्ञ किए थे भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज के द्वारा, तीन अश्वमेध यज्ञ कराए। तो एक यज्ञ के अंदर जब भगवान श्री कृष्ण आए हुए थे तब परीक्षित का जन्म हो चुका था। छोटा सा बालक परीक्षित गोद में उठा के दासी लाई, बालक युधिष्ठिर की गोद में बैठा हुआ नीचे उतरा, जहां श्री कृष्ण बैठे थे वहां खड़ा हो गया और उसको देखने लगा और देखता ही रह गया, आंखें वहां से हटाए नहीं, मुस्कुरा भी रहा है, थोड़ा सा संदेह भी हो रहा है। व्यासदेव बैठे हुए कृष्ण को कहा हे वसुदेव, ये बच्चा आपको पहचान गया है, ये ढूंढ रहा है, इसका नाम परीक्षित इसलिए है कि ये सबकी परीक्षा लिखता है कि मेरी रक्षा मेरी माँ के गर्भ में किसने की थी। आपको पहचान तो गया है देखकर, इसको एक संदेह रहता है, आपने जब रक्षा की थी उत्तरा के गर्भ में तब आपके चार हाथ थे, अब आप द्विभुज रूप में दो हाथों में हो। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अपना चतुर्भुज रूप किया, परीक्षित ने दर्शन किया और आंखें बंद की। उस दिन के बाद परीक्षित ने और किसी को नहीं देखा। तो परीक्षित को तो ऐसे तैयार किया जा रहा था इन दो कुलों के द्वारा, जैसे वसुदेव और देवकी को कारागृह में रख के संसार की दृष्टि से कष्ट दिया जा रहा था, लेकिन उनके घर में भगवान का अवतार होना था। आज यहाँ परीक्षित के यहाँ भागवत का अवतार होना है, इसलिए परीक्षाओं से गुजर रहा है। इसके बाद परीक्षित के कुल में धृतराष्ट्र का भी उद्धार हुआ, इसका वर्णन है। अब धृतराष्ट्र भी कोई साधारण व्यक्ति संसार का नहीं था, व्यासदेव का पुत्र था, पांडु व्यास का पुत्र था और धृतराष्ट्र भी व्यास का पुत्र था, लेकिन धृतराष्ट्र को नाम धृतराष्ट्र का अर्थ है जो दूसरे का राष्ट्र हड़प कर ले। धृतराष्ट्र जो राष्ट्र किसी और का हो उसको हड़प कर ले उसको धृतराष्ट्र बोलते हैं। हक तो था पांडु का लेकिन इसने कर लिया हड़प। आज धृतराष्ट्र महाभारत युद्ध के बाद 100 पुत्रों के मरने के बाद भी हस्तिनापुर में रह रहा है। महाराज युधिष्ठिर तो अपने पिता के समान, पिता से भी अधिक अपने ताऊ का सम्मान करके सेवा करते हैं, लेकिन विदुर धृतराष्ट्र से बहुत प्रेम करता है। विदुर कौन है? विदुर भी न्यास का पुत्र है, लेकिन वो दासी से है। ये तीसरे स्कंद में विदुर की कथा आएगी, लेकिन अब विदुर का इतना ही संकेत देते हैं कि विदुर महाभारत युद्ध के बाद जब ये पता लगा कि धृतराष्ट्र अभी तक पांडवों के पास हस्तिनापुर में रह रहा है, तो उसने कहा इसको यहां से निकालना चाहिए, इसका भी उद्धार करना चाहिए। विदुर वापस हस्तिनापुर आया, ये समाचार महाराज युधिष्ठिर को मिला। युधिष्ठिर महाराज विदुर को अपने सारी सभा को लेकर स्वागत करने गए और आंखों में आंसू भर के कहे पिता, तो हमने हमारा देखा नहीं था, पांडु तो छोटे छोड़ के हमको चला गया था, हर मुश्किल के समय आपने हमारी रक्षा की है। विदुर काका, विदुर आपने हमारी हर समय रक्षा की है, लाक्षाग्रह में भी आपने रक्षा की थी, विष दिया था जब हमारे भीम को दुर्योधन ने तब भी आपने रक्षा की थी, हर समय आप हमारी जैसे आंखें पलकों की पलकें आंखों की रक्षा करते हैं ऐसे रक्षा की थी। आज आप वापस आ गए, हम समझते हैं हमारा बहुत बड़ा भाग्य है। विदुर मुस्कुरा रहे थे लेकिन कुछ बोले नहीं। विदुर तो किसी उद्देश्य से आए थे, रात को सब सो जाते थे तब धृतराष्ट्र को उठा के कहते थे अभी तक यहाँ क्यों पड़े हो, तुम्हारे 100 पुत्र मारे गए अभी भी तुम यहाँ राज का भोग करना चाहते हो। धृतराष्ट्र तुम भीम के टुकड़ों के ऊपर पल रहे हो, कुत्ते की तरह जिसको लाठी मारता है फिर भी वहां रोटी खाने जाता है, जैसे भीम ने तेरे 100 पुत्र मारे तुम इसी के पास क्यों रह रहे हो। धृतराष्ट्र को हिला दिया विदुर ने सत्य बताकर। वहां श्रीमद् भागवत में लिखा है साधु संत महात्मा लोगों को जगाने के लिए होते हैं, मनोरंजन करने के लिए नहीं होते हैं, गाने बजाने के लिए नहीं होते हैं, सोए हुए आदमी को जगाने के लिए होते हैं। माया की गोद में सोया हुआ आदमी नहीं जागेगा तब तक वो संसार के अंदर जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकता रहेगा। धृतराष्ट्र तुम राज में रहोगे, मरोगे तो फिर कुत्ते की जूने में जाओगे। जो घर में आसक्ति करके मरता है वो अपने घर के बाहर कुत्ता बन के आता है और घर वाले ही उसको लाठी मारते हैं, और धन में आसक्ति रख के मरता है अपने ही घर में सांप बिच्छू बन के आएगा और अपने ही धन के ऊपर चक्कर लगाता रहेगा। लेकिन जिसने धन इकट्ठा किया है उसी को ही घर वाले मारेंगे। तो अब घर की आसक्ति से मुक्त करने के लिए भगवान शंकर का एक नाम है अनिकेत। अनिकेत उसको इसलिए कहते हैं कि उसने घर अभी तक नहीं बनाया। घर है नहीं बाबा, भाव भोलेनाथ के बाद घर नहीं है, वो कैलाश में रहते हैं ऐसे ही पेड़ के नीचे बैठे हुए, घर बनाया ही नहीं। त्यागी वैरागियों में सर्वश्रेष्ठ है, घर बनाएगा तो आसक्ति होगी ना मेरा है, तो मरते समय घर ही याद आएगा। ऐसे नहीं है, दुर्गा जी एक बार बहुत प्रश्न, दुर्गा जी ने कहा नहीं ये घर बनना चाहिए हमारा, बड़ा अच्छा बनाते हैं, बहुत बड़ा बड़ा घर भवन बनाया शंकर जी ने, बहुत बड़ा भवन बन गया, बोला गृह प्रवेश करना है, पूजा करानी है, ऋषियों को बुलाया, हाँ जी आ गए, बहुत बड़े ब्राह्मण महात्मा आ गए, गर्ग महाराज आ गए, गृह प्रवेश तैयारी हुआ, बोला आप दक्षिणा दीजिए। शंकर जी बोले मैं तो कुर्ता भी नहीं पहनता हूँ, जेब भी नहीं है, तो पैसा कहाँ से लाऊं, दक्षिणा किधर से दूंगा, मेरे पास तो कुछ दक्षिणा के लिए न बैंक में चेकबुक है न पैसा है, मैं तो कुछ रखता नहीं, तो आपको दक्षिणा देनी है, चलो ये घर आपको संकल्प करके दक्षिणा देता हूं। वो घर उनको दिया और बापा वापस जाके उधर ही बैठे जहां पहले ही बैठे। तो ये और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण भक्तों के लक्षण जो मुझे भक्त बहुत प्रिय हैं उनमें कहते अनिकेत निकेत भक्ति मान में प्रियो नर। जो घर नहीं बनाता है वो भक्त मुझे बहुत प्रिय है। तो यहां आज युधिष्ठिर को इसलिए हमारे कुछ बड़े बुजुर्ग आदमी होते ना समझदार होते थे, अपने नाम से घर नहीं बनाते थे, बेटे पोते के नाम लिख देते थे, कम से कम आसक्ति होगी तो तीसरी पीढ़ी को होगी, मैं तो छूट जाऊंगा ना, ये ऐसे देखा लिखते थे, अपना नाम नहीं लिखते थे किसी और का, या पूर्व दादे का नाम लिखते थे, वो पहले ही चला गया, उसको क्या आसक्ति अभी हुई, ये मेरे दादा का घर है तो अच्छा है जान छूट गई, ये बुद्धिमानी हुआ करती थी उनकी, आसक्ति नहीं होगी मेरा नाम होगा तो मैं सब बताएगा ना मेरा है, तो यह मेरा नहीं होगा, पोते के नाम लिख दिया या दादा के नाम लिख दिया चल जाएगा काम। तो धृतराष्ट्र को ऐसा विदुर ने उपदेश किया कि धृतराष्ट्र रात को तैयार हुए राजमहल छोड़ने को। धृतराष्ट्र के पांव के आवाज को सुन के गंधारी उठी, का पतिदेव मुझे कहां छोड़ के जाएंगे, जब अब तक आपका साथ दिया है तो अब जहां जाएंगे आप वहां मैं आपके साथ रहूंगी। तो गंधारी भी साथ चली है, गंधारी को भागवत सती सती कहती है, पतिव्रता नारियों में गंधारी का नाम अद्भुत है। आंखें तो भगवान ने दो बहुत सुंदर दी थी, जिस दिन पता लगा मेरा पति आंखों से नहीं देखता है, बोला जिस संसार को मेरा पति नहीं देखता है उसको मैं भी देखना पसंद नहीं करूंगी, और उसने कभी नहीं देखा, आंखों की पट्टी बांध दी थी। और गंधारी भी चली है, रात को ये तो निकल गए, सुबह उठ के युधिष्ठिर महाराज कहते चाचा कहाँ चला गया, ताऊ जी कहाँ चले गए, विदुर भी नहीं है, धृतराष्ट्र नहीं है, माँ गंधारी नहीं है, हमसे अपराध हो गया, हमने उनकी सेवा नहीं की, क्या कहाँ चले गए कहाँ चले गए। दूरों चारों ओर से बड़े दुखी हो गए। संजय से पूछा, संजय ने बोला आज तो हमारे मालिक हमसे भी धोखा करके चले गए, हमको भी मालूम नहीं कहाँ चले गए, रात को यहाँ थे। इसी दिन में नारद वहां आया, नारद ने कहा आप चिंता क्यों करते हो, वो तो उत्तर दिशा में चले गए, आज के पांच दिनों के बाद योग अग्नि से धृतराष्ट्र अपने शरीर को त्याग देगा, गंधारी उसमें प्रवेश करेगी और विदुर वहां से चल देगा। युधिष्ठिर महाराज, इस संसार में सदा के लिए कोई भी नहीं रहेगा, वो समय दूर नहीं है जब भगवान श्री कृष्ण भी अपने धाम चले जाएंगे। ये संकेत युधिष्ठिर महाराज को नारद दे के वहां से चले गए। इसके बाद परीक्षित महाराज के जन्म का वर्णन है। महाराज परीक्षित का समय के ऊपर जब जन्म होता है तो युधिष्ठिर महाराज के घर में पहली बार ये पोता पैदा हो रहा है। बहुत बड़ा उत्सव मनाया, ब्राह्मणों को दिल खोलकर दान दिया। पंडितों से जब जन्म पत्री निकाल के पूछने लगे तो पंडितों ने बताया बलि की तरह ये दानी होगा, आपकी तरह धीर होगा, अपने वचन की रक्षा करने वाला होगा और जो जो सद्गुण है भगवान श्री राम की तरह अस्त्र शस्त्र लगाने में चलाने में प्रवीण होगा। ऐसे परीक्षित महाराज की जन्म के समय जो ब्राह्मणों ने उसका जो जन्म पत्री बताई अद्भुत थी, लेकिन एक बात है, सम्राट बनेगा, पूरे विश्व का राजा बनेगा, लेकिन एक समय के ऊपर ब्राह्मण का श्राप भी इसको प्राप्त होगा। परीक्षित का समय आने के ऊपर विवाह हुआ उत्तर कुमार की बेटी से, पुत्र भी हुए परीक्षित को जन्मे जयादि। उस कन्या को जिसका विवाह हुआ था परीक्षित महाराज के साथ, अरावली, अरावली के अरावती नाम था, उसको पंडितों ने उसका जन्म पत्री देख के कहा था आप बहुत भाग्यशाली नहीं हो, आप किसी चक्रवर्ती महाराज की महारानी बनोगी, पुत्र तो होंगे, संतान रतन आपके घर में, लेकिन एक ग्रह ठीक नहीं है, आपका पति कभी विशेष एक दिशा में शिकार करने जाए तो उसको मना करना, अगर जाए भी तो कहना किसी ब्राह्मण का अपमान न करें, लेकिन जो होनी होती है उसको कोई नहीं टाल सकता, पहले बता भी दिया जाए तो भी समय आने के ऊपर आदमी सब कुछ भूल जाता है। इसके बाद परीक्षित महाराज के दिग्विजय का वर्णन है। अब परीक्षित की महिमा क्या बताते हैं, जन्म से पहले भगवान का दर्शन किया, अब कहते हैं परीक्षित महाराज कलयुग के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। दिग्विजय, दिग किसको कहते हैं, दिशाओं को, चारों दिशाओं में नहीं दसों दिशाओं में, दस दिशाएं हैं भारत संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में दस दिशाएं हैं, इसलिए महाराज दशरथ, रामचंद्र के पिता का नाम है दशरथ, इसका मतलब उसका रथ दस दिशाओं में चलता है, वो आकाश मार्ग से स्वर्गलोक में भी जाते थे, स्वर्ग देवताओं के लिए युद्ध करते थे तो ऊपर जाते थे, पाताल लोक में भी जाते थे, नीचे पाताल में लोग रहते हैं, नीचे तो सात लोग नीचे हैं पृथ्वी से, तो जिसका रथ दसों दिशाओं में जाए, आप ऊपर भी जाए नीचे भी जाए, चार दिशाओं में और चार कोनों में चल सके, और इन दस दिशाओं के दस दिग्पाल हैं जो दिशाओं की रक्षा करते हैं, और दस दिग्गज हाथी हैं, वो हाथी और दिग्पाल इनकी रक्षा करते हैं, उनको कहते ही दिग्पाल दिग्पाल हैं। तो महाराज परीक्षित दिग्विजय के लिए निकले, चारों ओर जहां जहां जाएं लोग पांडवों की महिमा गाएं, कैसे पांडव मान थे, कैसे उन्होंने हमारे राज के अपनी प्रजा की रक्षा की सुरक्षा की, तो परीक्षित को बड़ा आनंद आता था। इससे शिक्षा यह मिलती है जिसके बड़े बुजुर्ग कोई अच्छा काम करने जाते करके जाते हैं तो आने वाली पीढ़ियों को उत्साह बढ़ता है कि हमारे दादाजी ने ये अस्पताल खोल के गए थे, कि ये धर्मशाला बना के गए थे, कि ये जलशाला बनाया है, कि ये मंदिर बनाया है, तो पोते दादे कहते हैं अरे हमारे कितने पूर्वज अच्छे थे, देखो कितने धर्म के कार्य करके गए हैं। तो अच्छा काम बड़े करके जाते हैं तो आने वाली पीढ़ियों को उसका गौरव होता है और उसको भी अच्छा बनना जरूरी बाध्य हो जाते हैं। अच्छे के कुल के होगा तो अच्छा बनना ही पड़ेगा, कहीं गलती भी करेगा तो देखेगा नहीं सब लोग जानते हैं हमारे कुल को, तो आदमी इसलिए हम कहते हैं साधु का वेश तिलक आदि माला साथ ले जानी चाहिए। फायदा क्या है? फायदा ये है कि गलत काम नहीं करेगा। लोग कहेंगे साधु होकर गाली देता है, गाली देगा ही नहीं, बुराई करेगा नहीं। अगर आदमी साधु के वेश में होगा तो गलत काम नहीं कर सकता, गलत काम करेगा तो सभी लोग उसको देख लेंगे एकदम। तो इसलिए ये सुरक्षा का कवच है, ये जो सुरक्षा अपने आप को ठीक तरह बचा के रखने का कवच है। इसलिए हर एक आदमी जो समझता है कि मैं बुराई से बचूं, ठीक तरह तिलक लगाना चाहिए, माला हाथ में उठानी चाहिए और बड़े गौरव के साथ धोती पहन के, ये तो भारत संस्कृति का विलक्षण वेश है। इतना विलक्षण वेश है भारत संस्कृति का, ये हमको ये शिक्षा देने के लिए है कि इस दुनिया से आज तक कोई कुछ नहीं ले गया। क्या पहनते हैं ये पंडित लोग, क्या पहन के बैठे हैं? पुरुष क्या पहनता है वैदिक संस्कृति का? हाँ जी, धोती पहनता है, एक कपड़ा होता है, कोई सिलाई नहीं होती है और कोई जेब भी नहीं होता है धोती में। धोती में आज तक जेब नहीं बनाए। और माताएं भारत संस्कृति के वैदिक शिक्षाओं की माताएं पहना करती थी साड़ी, और साड़ी में भी कोई टांका नहीं लगता है, कोई जेब नहीं होता, न धोती में जेब है न साड़ी में जेब है। और जो दुनिया से जाता है उसके ऊपर जो दो गज कपड़े का टुकड़ा डालते हैं उसके ऊपर भी जेब नहीं होता, कफन में जेब नहीं होता है, पता है ना, बगैर सिला हुआ कपड़ा पहनाते हैं अंत में। क्या शिक्षा इससे मिलती है? कुछ साथ नहीं जाएगा, कुछ साथ नहीं जा सकता। ये वेद हमको पहले दिन से ये शिक्षा देता है, जो कुछ है यही भगवान का दिया, भगवान की सेवा में लगाओ, कुछ साथ जाएगा नहीं। ये वेश हमारी बहुत बड़ी शिक्षा है, इसको गौरव से पहनना चाहिए। अभी तो बच्चे जिस पैंट में 15 जेब है वो अच्छा लगता है, हम ज्यादा पैंट जेब वाला अच्छा लगता है। ये संग्रह करने वाले हैं, संग्रह मतलब कथा करने वाले हैं। ये साधु वृत्ति नहीं है, ये बहुत नीचे स्तर की वृत्ति है। इसलिए महाराज जब दिग्विजय के लिए निकले तो अपने पूर्वजों की महिमा जगह जगह सुनने को मिली। तब महाराज परीक्षित को एक स्थान के ऊपर एक बहुत दुखदायक दृश्य दिखा। दुखदायक दृश्य ये था कि एक गाय थी, दुबली पतली आंखों से आंसू बह रही थी, थर थर कांप रही थी। एक बैल था, तीन टांगें टूटी हुई थी, एक टांग के ऊपर खड़ा था और दोनों के पीछे राजा का वेश पहना हुआ काला कुरूप आदमी हाथ में डंडा लेके दोनों को मार रहा था। महाराज परीक्षित को क्रोध आ गया का पांडवों के इस राज में गाय और बैल के ऊपर अत्याचार हो और मैं राजा हूं और मैं ये देखूं, ये संभव नहीं है। उसने उसकी ओर आंख उठा के कहा कि तुम समझते हो भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह इस धरती के ऊपर नहीं है, इसलिए तुम गाय और बैल के ऊपर अत्याचार कर रहे हो। श्री कृष्ण के तो जन्म का उद्देश्य है गौ ब्राह्मण रक्षा, गौ ब्राह्मण हिताय जगत हिताय गोविंदाय नमो नमः। आप गाय के ऊपर आक्रमण कर रहे हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता, परीक्षा का जब तक राज होगा तुम जिंदा नहीं रह सकते। इसी धरती के ऊपर इसी धरती का पुत्र परीक्षित था जिसने गाय और बैल की रक्षा की थी, आज इसी धरती के ऊपर गाय और बैल के ऊपर अत्याचार हो रहा है। हमारे ही अपने लोग उन्हीं गाय और बैलों को कहीं कहीं मरवाने के लिए भेज देते हैं। दूध नहीं देती है तो गाय को बाहर छोड़ देते हैं। अरे गाय को छोड़े तो क्या बात है, माता पिता को भी घर से बाहर निकाल देते हैं। ऐसा कलयुग का प्रभाव इतना बढ़ गया है चारों ओर से। युधिष्ठिर महाराज जब ध्यान में बैठते थे 2 घंटे तो अपने चारों भाइयों को बाहर खड़ा कर देते थे, कोई अंदर आ न पाए। मैं भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता हूं लेकिन किसी का कोई समस्या है उसका आप समाधान कर देना। एक बार एक भागता हुआ व्यक्ति आया, पहले दरवाजे के ऊपर भीम को कहा युधिष्ठिर महाराज से मिलना है। महाराज तो भगवान के ध्यान में बैठे हैं श्री कृष्ण के, आप मुझे बताइए क्या सेवा है। बोला सेवा बताते हैं तो सुन लो, मैं आ रहा था रास्ते से, मैंने देखा है एक कुएं के अंदर से एक आदमी ने एक बाल्टी पानी का निकाला। बोला अच्छा किया। बोला 9 बर्तन पानी के छोटे से भर दिए। बोला भर गए, अच्छा किया, बड़ी बाल्टी होगी। बोला वो तो ठीक है, पर मैंने देखा 9 बर्तन भरे हुए वापस बाल्टी में डाले, बाल्टी आधी पड़ी थी। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? अरे आंखों के सामने एक ही ये 9 मटके एक बड़े बर्तन से भरो, फिर वापस ये 9 उसमें डालो तो वो भर जाना चाहिए ना। ये हमको समझ में नहीं आता है, महाराज से पूछ लो। प्रश्न तो और भी 4 हैं, लेकिन इस एक प्रश्न के ऊपर अभी चर्चा करते हैं, समय मिला तो दूसरे प्रश्नों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। समय आने के ऊपर महाराज युधिष्ठिर से पूछा भीम ने कि ऐसे मुझसे पूछा था इसने, कौन था? युधिष्ठिर महाराज ने कहा ये कलयुग था। ये कह रहा था पहले एक घर में बड़ा हाथ होता था, बेटा बेटियां 4, 5, 7, 8, 9 परिवार, चाचे का मामे का सबका पालन पोषण करता था। एक आदमी कमाता था, पूरे परिवार के 8-9 आदमी का पालन पोषण करता था। कलयुग कह रहा था, और कलयुग कह रहा है अब मेरा राज है। 9 कमाएंगे एक घर में बेकार होगा तो उसको भी कोई पालने को तैयार नहीं होगा। इतनी दूर अभी समय इतना आगे नहीं बढ़ा है, 50 साल पहले एक ही आदमी घर का कमाता था और 8-8, 10-10 घर में परिवार में हमारे सदस्य हुआ करते थे और सबको पढ़ाया भी जाता था, लिखाया भी जाता था, शादियां भी होती थी, घर दुकान मकान भी एक बार बना के देता था। अब तो ये बच्चे तो 1-2 हैं, वो घरवाली खुद कमाते हैं तब भी एक घर में बूढ़ा बच गया तो बोलेगा नहीं, इसकी पालन पोषण हमसे नहीं होगा, इसको बूढ़ा आश्रम में छोड़ के आओ। बूढ़ा आश्रम को हम कहते हैं बदमाश बच्चों का अत्याचार, जो कहते हैं ओल्ड एज होम अंग्रेजी में, हम उसका नाम लिखा है बदमाश बच्चों का अत्याचार। बच्चे जिसके नहीं संभालते उनको वहां भेजते हैं। तुम्हारे बच्चे जिंदा है तो वहां क्यों भेजने की जरूरत क्या? बड़े बुजुर्गों का सम्मान जो नहीं करते हैं उनका यश कीर्ति और विद्या सब नाश हो जाती है। ये एक ही तो भारत संस्कृति के वैदिक संस्कृति ऐसी है जिसमें बड़ों का सम्मान करने सिखाया जाता है। माता पिता क्या बड़े गुरु, ये तो भगवत गीता में शरीर की तपस्या कही गई है, देव द्वेज गुरु प्रज्ञा पूजनम। ब्राह्मण का, देवता का, भगवान का, ब्राह्मण का, बड़े बुजुर्ग, माता पिता, आचार्य गुरुजन को सेवा करना, ये सरल शरीर का धर्म तपस्या है, नहीं चाहते हुए भी करनी चाहिए। एक स्त्री झगड़ा करती थी अपने पति से कि तेरा बाप सारी रात खांसता है, नींद खराब करता है, कुछ पका के देती है तो कभी कहता है नमक ज्यादा है, कभी कहता है ठंडा है, इसको आप जाके हरिद्वार छोड़ के आओ। पति बेचारा सारा दिन काम करके घर में आए फिर भी झगड़ा, बेचारा दुखी हो गया। पिताजी को कहा चलो पिताजी आपको हरिद्वार गंगा स्नान कराने चलता। पिताजी ठीक है बेटा तुम्हारी इच्छा। जब मुजफ्फरनगर से आगे गया, थोड़ा सा जहां जंगल था वहां पिताजी को पेड़ के नीचे बिठा के कहा पिताजी आप बैठिए, मैं आपके लिए जलपान का व्यवस्था करके आता हूं। बेटा जैसे मुड़ के जाने लगा, पिताजी जोर से हंसने लगे और फिर रोने लगे। बेटा वापस मुड़ के आया, पिताजी को कहता है पिताजी आप हंस क्यों रहे हैं? बोला बेटा मैं हंस इसलिए रहा हूं कि तुम वापस नहीं आओगे, तुम मुझे यहां छोड़ के जा रहे हो, तुम कह रहे हो कि जलपान लेने लेकिन तुम मुझे यहीं छोड़ के जाओगे। बोला फिर पिताजी आपको रोना क्यों आ रहा है? बोला बेटा रो इसलिए रहा हूं कि मैं भी मेरे बाप को यहीं छोड़ के गया था, मेरे बाप को मैं भी यहां छोड़ के गया था इसलिए रो रहा हूं। कि मैंने किया था, मेरे को आज भुगतना पड़ रहा है। बेटे ने जब ये सुना तो पिताजी को कहा कि अब चलिए गंगा स्नान भी कराता हूँ, वापस घर भी ले जाऊंगा। पत्नी ने कहा फिर इसको लाए, वापस मुसीबत को लाए? बोला दो चार साल जितने दिन जिंदा रहे इसकी सेवा कर लो, नहीं तो हमारे बेटे भी हमारे को वहीं छोड़ के आएंगे जहां हम इनको छोड़ के आए। तो मत समझना कि तुम सदा जवान इतने बड़े रहोगे और तुम कभी बूढ़े नहीं होगे। दूसरे बूढ़े का अपमान करने वाले को बूढ़ा होना पड़ेगा, ये भूलना नहीं चाहिए। बड़ों का सम्मान करना बहुत अति आवश्यक है। ये विद्या तो वैदिक विद्या है। पढ़ने के बाद घर जाते हुए स्टूडेंट को, शिष्य को गुरु कहता था मातर देवो भव, तेरी माँ तेरे लिए पूजने है, पितृ देवो भव, ये शिक्षा दे के घर भेजता था। अब स्कूल में कोई नहीं सिखाता है कि तेरे माता पिता का सम्मान करना, उसके चरणों में प्रणाम करना, स्कूल में कोई नहीं सिखाता है ये शिक्षा। ये शिक्षा किताबों के अंदर है नहीं, इसलिए किसी उर्दू के कवि ने कहा है वो सब किताब काबिले जबत है, बंद कर दो उन किताबों को, फेंक दो, फाड़ दो, जला दो, जिनको पढ़ के बेटा बाप को बोले खपत है। वैसे किताब पढ़ने के बाद बेटा बाप को बोले तुम्हें पता नहीं लगता है, तुम कुछ समझते नहीं हो, तुम्हें क्या पता मोबाइल कैसे चलता है, तुम्हें क्या पता कंप्यूटर कैसे चलता है, कि मुझे ये पता है कि तू कैसे पैदा हुआ और तेरे को तो मेरे कैसे चलना सिखाया उंगली से पकड़ के, ये तो मेरे को पता है ना। ये संस्कृति हमारी कपूर की तरह उड़ती जा रही है, पेट्रोल की तरह हवा में उड़ रही है। घरों के अंदर मर्यादाएं नहीं रह गई। कारण क्या है? कारण यह है कि आध्यात्मिकता का अभाव है। सतशास्त्र की शिक्षाओं को सुनने वाले नहीं है, सुनाने वाले नहीं है। इसलिए ये कथा कोई, ये सत्संग या भागवत की कथा टाइम पास के लिए भी नहीं है, कोई अनुष्ठान नहीं है, कोई भगवान से धन मांगने के लिए भी अभी नहीं है। अरे ये तो हमारे को अपने संस्कारों को ठीक करने के लिए, हमारे को अपने आत्मा के उद्धार के लिए, सबको भला करने का संकल्प करने के लिए। बाकी दुनिया की चीजें तो वैसे भी भगवान जिसको देना चाहे दे सकता है, उसके लिए कोई कमी थोड़ी है देने की, उसके लिए मांगने की जरूरत नहीं। ये तो शिक्षा अति आवश्यक है हमारे अपने घरों के लिए। ये भागवत रामायण पहले जमाने में ऐसे पढ़ने पढ़ाने की जरूरत नहीं थी, ये तो दादी दादा घर में अपने बच्चों पोतों पोतों को सिखाता है। ये तो घरों में, ये घरों का शास्त्र है कि घर के अंदर कैसे रहना चाहिए, उसकी शिक्षा है। ये हमारी मर्यादाओं की शिक्षा है। ये तो ऐसे कोई पंडित की तरह पोथी पढ़ के पढ़ने की नहीं है, कैसे हमको जीवन जीना है। ये भागवत धर्म जीने की कला सिखाता है कि हम किस तरीके से मर्यादा से जब तक जिए तो सबको सुख दें और भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करें, जब जाना हो तो अपने घर वापस भगवान के चरणों में लौट जाएं। ऐसा ठीक तरह से शिक्षा ग्रहण शास्त्र के द्वारा होगी, नहीं तो और कोई रास्ता नहीं। आज महाराज परीक्षित ने जब बैल और गाय के ऊपर अत्याचार देखा, तलवार निकाली, मौत के भय से राजा के वेश में काला कलूटा व्यक्ति घुटनों पर नीचे गिर के शरणागत हो गया, महाराज प्राण रक्षा करो मैं आपकी शरण में हूं। क्षत्रिय का यह धर्म है कि कोई प्राण रक्षा मांगता है तो उसको मारता नहीं। कौन हो, मेरे राज के अंदर अधर्म क्यों कर रहे हो? महाराज मैं कलजुग हूं। वो कहने लगा मैं कलजुग हूं, अब मेरा राज आ गया है। महाराज परीक्षित ने कहा आप यहां नहीं रह सकते, कलजुग थर थर कांप रहा है। महाराज ने बेल की तरफ देखा और कहा आप कौन हैं? गाय की ओर देखा कि आप कौन हैं? किस कौन आपको मार रहा है, किसने आपके पांव काटे हैं? बैल कहता है कोई किसी को मारता नहीं है, हर एक के अपने कर्म उसको कष्ट देते हैं। महाराज परीक्षित कहता है मैं आंखों से देख रहा हूं कि ये आदमी हाथ में उठाया हुआ डंडा आपको मार रहा है, आप इसके ऊपर उंगली भी नहीं उठा रहे हो। बैल कहता है नहीं, कोई किसी के मारने का कारण नहीं, महाराज परीक्षक को दिव्य दृष्टि थी, देखा कि ये बैल साधारण कोई बैल नहीं है, ये धर्म है। और बैल धर्म था, और धर्म ध्वल बैल के रूप में आदि भौतिक रूप धर्म का बैल है, और गाय पृथ्वी थी। पृथ्वी कलयुग के अत्याचार से भयभीत थी, कांप रही थी। तुम्हारे बच्चों को किसी ने मार दिया है क्या, पूछ रहा था धर्म गाय से, पूछ रहा था कि तुम्हें कोई मार गया क्या, तुम्हारे बच्चों को कोई मारता है, तुम्हारे को खाना नहीं मिलता है, गली गली में भटकना पड़ता है, प्लास्टिक खानी पड़ती है क्या, गाय आजकल प्लास्टिक खा रही है गलियों में। महाराज परीक्षित को दिव्य दृष्टि थी, धर्म को पहचाना, धर्म के पूछा, धर्म ने कहा चार टांगों के ऊपर धर्म खड़ा होता है, चार खंभों के ऊपर। सतयुग में तो मेरे चार पांव थे, तीन युग बीत गए, तीन पांव टूट गए, कलयुग में एक ही पांव के ऊपर मैं चल रहा हूं, अभी कलयुग ये भी रहने नहीं देगा। तब तक कलयुग ने कहा महाराज मैं, मेरा राज तो शुरू हो ही चुका है, मेरे को रहने के लिए कोई स्थान दीजिए। महाराज परीक्षित ने कहा कलयुग तुमको रहना है तो वहां जाकर रहो जहां सुरापान होता है, सुरापान का मतलब नशा होता है, शराब आदि। परीक्षित महाराज को कलयुग कहता है महाराज आपके राज में तो ऐसा मेरे को कोई स्थान नहीं मिलेगा, मैं भटक जाऊंगा, कहां जाऊं, दूसरा स्थान दीजिए। बोला जहां सुनो, जहां पशु हत्या होती है, जहां कोस घर है, स्लाटर हाउस है, पशु को मारते हैं खाने के लिए, वहां जाके तुम निवास करो कलयुग। महाराज आपके देश में तो ऐसा स्थान नहीं है, मेरे को और स्थान दीजिए। तीसरा स्थान दिया जहां व्यभिचार होता है, विवाह से बाहर स्त्री पुरुष का संबंध होता है, प्रॉस्टिट्यूशन होती है, वहां जाके तुम अपना निवास करो कलयुग। महाराज ये भी संभव नहीं है, आपके राज में मिलना मुश्किल है, स्थान और चाहिए। तब तो आप जुआ जहां होती है वहां जाकर रहो। महाराज ये भी मुश्किल है, मिलना मुश्किल है। तो फिर जहां धन का संग्रह होता है सोने के रूप में, वहां तुम अपना निवास करो। कलयुग को ये पांच जगहें परीक्षित महाराज ने रहने को दी थी। और परीक्षित के राज में न तो कोई नशे का बड़ा दुकान कहीं था जहां कलयुग अपना राज जमाए, न कहीं मांस आहार करने के लिए कोई कोष घर खुले हुए थे, न जुआ खाने खुले थे, और न व्यभिचार का कोई स्थान था। आज कलयुग का इतना बोलबाला है कि ये चार चीजें सरेआम दुनिया के अंदर हर शहर में, हर नगर में, हर घर के दरवाजे के ऊपर खुली खुलाई दिखती हैं और मिलती हैं। कहां कहां तक कलयुग ने अपने पांव पसारे हैं देख लो, कोई घर सुरक्षित नहीं है कलयुग के प्रभाव से। ये चार चीजें हर जगह आपको दिखाई देगी। नाम क्या लिखेंगे शराब खाने का, परमंड साहब, देशी और क्या, अंग्रेजी इतना शराब का परमट है। परमट का मतलब मर मिट, तो मरेगा और मिटेगा, पैसा भी तेरा जाएगा, तेरा स्वास्थ्य भी जाएगा, और गटर में गिरा पड़ा रहेगा। एक बार पागल खाने के सामने से एक आदमी की गाड़ी जा रही थी, पहिया पंचर हो गया, नीचे उतरा, पहिए के बुल्ट खोले, पास में गटर था, सब उसमें गिर गए। दूसरा जब व्हील निकाल के लगाने लगा तो बुल्ट नहीं है, दुखी हो गया, क्या गवर्नमेंट यहां गटर बना दिया है, हमारे सारे बुल्ट चले गए। पागल खाने की खिड़की से आदमी देख रहा था, नीचे उतर के आया, बोला क्या हुआ, बोला बुल्ट सारे बह गए। बोला ऐसे करो, तीन बाकी टायर में चार चार बुलेट हैं, एक एक तीनों से निकालो, तीन से इसको चलाओ, घर जाओ, कल दूसरे लगाना। बोला तू पागल है, तेरे को इतना अकल। उसने बोला मैं पागल हूं, शराबी थोड़ी हूं, मैं पागल तो हूं लेकिन शराबी थोड़ी हूं कि सारे बुलेट भी गंवाए और अभी मूर्खों की तरह यहां बैठे हुए हो। तो ये धर्म चार स्तंभों के ऊपर खड़ा है, सत्य, दया, तपस्या और पवित्रता। सत्य, दया, तपस्या और पवित्रता, ये धर्म के चार स्तंभ हैं। सत्य की समाप्ति होती है धर्म में, ये चार चीजें कब टूटती हैं? ये खंभों के ऊपर ये पंडाल खड़ा है ना, खंभा निकालते जाओगे तो पंडाल नीचे आता जाएगा। पिलर के ऊपर घर खड़ा है, पिलर हिल गया तो पूरी मकान हिल जाएगा। धर्म चार खंभों के ऊपर खड़ा है। आइए तपस्या को लेते हैं। तपस्या धर्म का वो स्तंभ है जिसको गिराने के लिए नशा है। नशा करने वाला आदमी तपस्या नहीं कर सकता, नशे वाला आदमी तपस्या नहीं कर सकता। दो घंटे बैठना है, अगर आदत सिगरेट पीने की है तो भी बाहर जाएगा, थोड़ा सा धुआं निकालेगा, फिर वापस आएगा, बैठ नहीं सकता। एक रोटी का नशा इतना बड़ा नशा है जिसके लिए 8 घंटे रोज मजदूरी करनी पड़ती है। रोज मेहनत मजदूरी क्यों करते हैं? 2 टाइम रोटी खानी, ये एक बड़ा नशा है। इसके ऊपर एक और नशा बढ़ा दिया तो 2 घंटे और काम करना पड़ेगा, मजदूरी भी और करनी पड़ेगी। और वो नशा, ये नशा कैसा होता है, इस नशे को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कैमल सिविलाइजेशन, ऊंट का समाज। नशे करने वाले को बोलते हैं ऊंटों का समाज है। क्यों ऐसे बोलते हैं? ऊंट क्या खाता है? कांटे वाले झाड़ खाता है ऊंट, खार धार झाड़ियां जो कांटे होते हैं झाड़ों में, उसको ऊंट खाता है ऊपर से। जब ऊंट कांटे वाली झाड़ी खाता है तो उसके मुंह के अंदर कांटे लगते हैं और मुंह से खून निकलता है। जब खून निकलता है, ताजा खून होता है और गर्म खून होता है, और ऊंट समझता है बड़ी अच्छी गर्म ताजी चीज खा रहा हूं, लेकिन खाता क्या है? अपना खून। कांटे वाले झाड़ में कोई न गर्म चीज है, न कोई नमकीन चीज है, अपने खून को खाता है और समझता है कि बहुत बड़ा मौत से खा रहा हूं। ऐसे नशे करने वाला आदमी पैसा भी अपना गंवाता है, चेतना भी अपनी गंवाता है, परिवार भी अपने को भूखा रख के दुखी करता है, लेकिन समझता है नहीं, मैं बहुत खुश हूं, बड़ा मेरे को मजा आ रहा है, क्या आनंद है। ऊंट की सिविलाइजेशन की तरह अपना सत्यानाश करके, अपना खून बहाकर अपने आप को खुश समझ रहा है, इसको बोलते हैं केमिन सिविलाइजेशन। ये तपस्या का सत्यानाश कर रहा है। सुबह उठ के पहले लोग भगवान का भजन करते थे, घंटी बजती थी घर में, आरती का आवाज आता था। अब सुबह किसका आवाज आता है घरों के अंदर? प्लेट और कप का आवाज आता है, ओम जय चाय की प्याली। यह भगवान भूल गया सबको। एक नशे ने इतना हमको बेकार कर दिया, कोई काम नहीं कर सकते। जब तक नहीं मिलेगा तब किसी काम के नहीं है। इतना बड़ा आदमी जिसको सर्वश्रेष्ठ भगवान की सृष्टि में अशरफल मखलूक है, सबसे उत्तम प्राणी है, और एक कप चाय का मोहताज है, उसके बगैर उसका दिन नहीं चल सकता है। कितना कितना नीचे गिर गया है, कितना नीचे स्तर के ऊपर आदमी आ गया है। जो भगवान को प्राप्त कर सकता था वो कप चाय के लिए बाहर जाके बैठता है दरवाजे के ऊपर कि चाय का एक कप पिला दो हमको। ये नशा तपस्या, और तपस्या तपोदेव्यम पुत्र का आगे कहेगा ऋषभदेव भगवान का अवतार, अपने 100 बेटों को, जिसमें से एक बड़ा बेटा भरत है, जिसके नाम से ये देश भारत कहलाता है। तपस्या करो बेटा, तपस्या से सुख मिलेगा। भोग में रोग है, भोग रोग देता है, तपस्या सुख देती है, दिव्य है। तपस्या करने वाले को ही सुख मिलता है। तपस्या सभी करते हैं, बच्चे आपके स्कूल जाते हैं 8 घंटे, तपस्या है। घर से बाहर जाना पड़ता है, क्यों? क्योंकि विद्या प्राप्त करके आएंगे। तपस्या तो सभी करते हैं, लेकिन दिव्य तपस्या कोई नहीं करता है भगवान को प्राप्त करने की। तो तपस्या की हानि करता है नशा, इस नशे से अपने आप को बचाओ, हिम्मत करो। आपके आपके दृढ़ संकल्प से बड़े नशे से आप बच सकते हैं। हमने प्रयोग करके देखा है दुनिया के अंदर, शराब के नहीं नशाई, हीरोइन के नशाई, उससे भी ज्यादा हर नशे में बिल्कुल लिप्त उन लोगों के ऊपर हमने प्रयोग करके देखा है, एक दो नहीं लाखों की संख्या में। केवल भगवान के नाम का कीर्तन और भगवान का प्रसाद उनको दिया, सब नशे उनके छूट गए। और ये हजारों लाखों लोग अभी दुनिया में वो जीते हैं, जीवित हैं, जो कहते हैं हमारा जीवन नशे के बगैर नहीं चलता था, अब हमारा जीवन भगवान के नाम के बगैर नहीं चलता। केवल भगवान के नाम लेने से नशा छूट जाए तो काय के लिए ऐसा सस्ता सौदा न कर लिया जाए। फायदा भी डबल है, भगवान भी मिलेगा, नशा भी छूटेगा, सुख भी मिलेगा, पैसा भी बचेगा, परिवार भी सुखी हो जाएगा। दया जाती है पशु हत्या से, दूसरा धर्म का स्तंभ है दया। जब जीते जी को मारता है आदमी तो वो दया नहीं कर सकता, और दया नहीं है तो धर्म समाप्त हो गया। दया धर्म का मूल है। पशु हत्या दया का बिल्कुल जड़ से उखाड़ के फेंक देता है। आवश्यकता क्या है पशु हत्या की? मानव के जीवन के लिए अति उत्तम पदार्थ भगवान ने वनस्पतियों के फल सब्जियों के रूप में दूध के रूप में जब पर्याप्त मात्रा में दिए हैं तो क्या जरूरत है किसी पशु की हत्या करने की? और वैसे भी मानव की जो बनावट है उसके दांत की और उसके आंत की, वो पशु खाने के लिए नहीं है। अभी तो डॉक्टर मेडिकल साइंस में भी कहते हैं कि पेट का कैंसर पशु से होता है, मांसाहार से होता है, कोलेस्ट्रॉल और दिल की बीमारियों के ज्यादा मात्रा उनमें होती है, क्योंकि वो चीज बनी हुई नहीं है उसके लिए। लेकिन फिर भी पाश्चात्य देशों के अंदर तो लोग अब पशु आहार से बचकर और शाकाहारी बनने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान को न जानते हुए भी स्वस्थ के कारण। लेकिन हमारे यहाँ उल्टी गंगा चल रही है। जिस देश में गऊ की सेवा होती थी और पशु को बच्चे की तरह पाला जाता था, वहां पशु हत्या चारों ओर दिखाई दे रही है, उल्टी गंगा चल रही है। इससे दया समाप्त हो गई। दया समाप्त और किसी के ऊपर नहीं हुई, उस दया के समापति का भयानक सबसे रूप यह है कि हमने अपने संतान के ऊपर दया करना छोड़ दी, दूसरों के ऊपर नहीं, अपने संतानों के ऊपर दया करना छोड़ दी, जन्म से पहले ही उसको मारने का प्रबंध कर दिया। ये मांसाहार का परिणाम है, ये पशु हत्या का परिणाम है। वो जीते मरता है और अपने घर में आने वाले जीव को गर्भ में आने से पहले ही मारने का प्रयास कर रहे हैं। इससे ज्यादा और कौन सा पाप करेंगे बड़े से बड़ा? भ्रूण हत्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? फिटिसाइड। ये परिणाम किसका है? पशु हत्या का। ये अकाल, ये युद्ध, ये सुनामी, ये भूकंप कहां से आते हैं? ये इसको बोलते हैं सामूहिक कर्म। एक कर्म होता है एक व्यक्ति का, एक कर्म होता है सामूहिक राज्य का, और उसका दंड सबको भोगना पड़ता है। पवित्रता जाती है विचार और पर स्त्री पर पुरुष के संग से पवित्रता का सत्यानाश हो जाता है, और सत्य जाता है जुआ करने से। चार धर्म के ये स्तंभ ऐसे नाश होते हैं। और परीक्षित महाराज यहां से वापस लौटते हैं, एक दिन घर से शिकार के लिए निकलते हैं। एक दिशा में शिकार के लिए जाते हुए अपने सारे साथियों से बिछड़ जाते हैं। बहुत प्यास लगती है, प्यास में व्याकुल महाराज परीक्षित एक ऋषि सम्यक के आश्रम में प्रवेश करते हैं। ऋषि समाधि में है, महाराज का स्वागत ऋषि ने नहीं किया, महाराज को क्रोध आया। महाराज ने मरा हुआ पड़ा था सांप बाहर उसको उठा के सम्यक के गले में डाल दिया, महाराज वहां से वापस लौटे। रास्ते में वापस आते हुए महाराज को पछताव होने लगा कि मैंने एक ऋषि का अपमान कैसे कर दिया, ये तो बहुत बड़ा अधर्म का काम किया, हमारा कुल नाश हो जाएगा, मेरे अकेले को इसका दंड मिलना चाहिए। महाराज पश्चाताप करते हुए घर जा रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चों ने जाकर सम्यक ऋषि के बेटे श्रृंगी को बोला, तुम्हारे पिता के गले में महाराज परीक्षित मरा हुआ सांप डाल के गया है, तुम ब्राह्मण के बेटे हो, तुम्हारी शक्ति का तुम्हें पता नहीं है। श्रृंगी ऋषि ने जल लिया नदी का हाथ में और कहा कि जिस राजा ने मेरे पिता के गले में सांप डाला है, 7 दिन के अंदर तक्षक सांप काटेगा और वो मरेगा। क्या समझते हैं ये राजा, हम अपने आप को हमारे पास आशीर्वाद लेने आते हैं तभी सुखी रह सकते हैं। बेटा वापस अपने घर में आया, पिताजी तो अभी तक समाधि में थे, रोने लगा जोर जोर से। बेटे के रोने के ऊपर पिताजी की समाधि खुली, बेटा रो क्यों रहा है, किसी ने तुम्हें डांटा है, मारा है, अपमान किया है? बोला नहीं, आपका अपमान हुआ है, आपके गले में ये सांप महाराज डाल के गए। उसने सांप को उठा के मारा, ऋषि ने तो फेंक दिया। बोला इसमें क्या हुआ? बोला मैंने राजा को सांप दे दिया है, 7 दिन में मर जाएगा। ऋषि श्रृंगी कहता है, बेटा तुम कच्चे हो, तुमने अच्छा काम नहीं किया, ऐसा राजा इस पृथ्वी के ऊपर, इस धरती के ऊपर ऐसा राजा धर्मात्मा नहीं मिलेगा, सारी प्रजा दुखी हो जाएगी, आपने जो काम किया है इसको हम अनुमोदित नहीं करते हैं। बेटा अच्छा काम नहीं किया आपने। यह सिर्फ आपको जानकारी के लिए एक बात बताते हैं, प्राय कथा में लोग बताते हैं कि महाराज परीक्षित के सर के ऊपर सोने का मुकुट था और सोने के मुकुट के अंदर कलयुग बैठ गया था, लेकिन न शास्त्र के अंदर और न ही संतों की मत में और आचार्यों के अनुभव में इस बात को माना जाता है। जिसकी जन्म से पहले भगवान रक्षा कर सकता है उसके ऊपर कलयुग का प्रभाव हो, यह संभव नहीं है, यह असंभव है। कलयुग ने किसके ऊपर प्रभाव डाला? उन बच्चों के ऊपर जो चारों ओर खड़े थे, उन बच्चों के ऊपर कलयुग ने प्रवेश किया और कच्चे श्रृंगी ब्राह्मण ऋषि के बेटे, जिसके पास बल तो था लेकिन बुद्धि नहीं थी, उसको कलयुग ने अपना पहला शिकार बनाया। तब से क्षत्रिय वर्ण और ब्राह्मण वर्ण के बीच में विरोध चालू हो गया। तब से रक्षक क्षत्रिय शाप के कारण ब्राह्मणों के चले गए बहुत से यहां से, और तब बाहर के लोग यहां आके राज करने लगे, जब क्षत्रियों से हीन ये देश हो गया। और फिर आगे चल के ऐसे ही वैश्यों के साथ किया जिससे जैन धर्म बन गया, अलग हो गए। ये सब कलयुग का प्रभाव ऊपर से नीचे आया है, नीचे से ऊपर नहीं गया। महाराज परीक्षित को क्रोध आए यह भी संभव नहीं है, और प्यास के कारण क्रोध आए यह भी संभव नहीं है। ये तो भगवान ने, मरना तो एक दिन सबको है, लेकिन परीक्षित के मृत्यु को अमर बनाना था, भागवत का अवतार करना था परीक्षित के ऊपर। सम्यक ऋषि को तो उसका कोई फर्क पड़ा नहीं, उसने एकदम अपने शिष्य को भेजा, जाओ महाराज को जाके चेतावनी दे दो कि महाराज मेरे अनजान बालक ने आपको श्राप दे दिया है, हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी सदगति हो। सम्यक का शिष्य परीक्षित के दरवाजे पे पहुंचा हस्तनापुर में, महाराज परीक्षित घर में प्रवेश किया पछताताप करते हुए, और इतने में किसी ने संदेश दिया, महाराज ब्राह्मण सम्यक का शिष्य आपके लिए मिलने को बाहर आया। महाराज परीक्षित स्वयं मिलने को आए, शिष्य को अंदर बुलाया, ब्राह्मण को ऐसे नहीं है, ब्राह्मण चाहे शिष्य भी होता था तो राजा उसका सम्मान करके दरवाजे के ऊपर आया, ब्राह्मण को प्रणाम किया। ब्राह्मण ने कहा, महाराज आपकी सदगति हो, हमारे गुरु सम्यक ऋषि ने संदेश भेजा है कि मेरे पुत्र ने अनजानने में आपको श्राप दे दिया है, 7 दिन आपके पास जीवन के बचे हैं, आप अपना कल्याण कर लें। परीक्षित महाराज ने कहा बहुत अच्छा हुआ, मैं अकेला ही दंड भोगूंगा, नहीं तो मेरा कुल नाश हो जाता। ब्राह्मण का अपराध कुल नाशक है, कुल घातक है, अब तो मैं अकेला इसको सहूंगा। महाराज परीक्षित वहीं से चले गए, वापस घर में नहीं गए, पानी भी नहीं पिया है। अभी प्यास होती तो पानी पीते ना, पानी नहीं पिया। गंगा जी के तट के ऊपर चले गए सुखताल में। महाराज परीक्षित जैसे घर का त्याग किया, राज का त्याग किया, सारे ब्रह्मांड में समाचार फैल गया। आज फिर ऋषि आने लगे, अंगिरा अत्रि आदि, व्यास भी आया तो नारद भी आया, और ये सारे ऋषि वहां इकट्ठे होके आके बैठे। महाराज परीक्षित ने कहा, पहले तो बहुत भयभीत हुए कि ब्राह्मण का अपमान किया है, इतने सारे ब्राह्मण बंधु यहां इकट्ठे हुए हैं, कहीं ऐसे न हो कि मेरे को अधम समझ के और मेरा अपमान कर दें। हाथ जोड़ के परीक्षित कहते, महाराज मुझसे अपराध हो गया, ऋषि श्रृंगे का मैं प्यास के कारण अपमान करके आया हूँ, अब तो मैं गंगा के तट के ऊपर अनशन करके जल नहीं पीऊंगा, न अन्न खाऊंगा, और मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे भगवान श्री कृष्ण विष्णु की कथा बताइए, और फिर मैं आपसे ये भी प्रार्थना करता हूँ कि जिसका मृत्यु निकट हो उसको क्या करना चाहिए। अब तो सारे ऋषि कहते हैं, महाराज आप जैसा पांडु वश में ऐसा व्रत धारण कर सकता है, गंगा जी के तट के ऊपर जल पान का त्याग कर हरि कथा सुनेगा, हम यहाँ जब तक आपकी सदगति नहीं होगी हम यहाँ प्रतीक्षा करेंगे और आपके मंगल के लिए हम यहाँ रहेंगे। अब तो परीक्षित ने देखा कि ब्राह्मण मेरे विरोध में नहीं है, तो कुछ लोग कहने लगे कि यज्ञ कराना चाहिए, कुछ रहने चाहिए कि दान तपस्या करनी चाहिए। इतने बीच में नौजवान सांवले रंग का दिगंबर वेश में, कपड़ा एक भी नहीं पहना हुआ है, और पीछे छोटे से बालक और नवयुवक लड़कियां उसको पागल समझ के आ रही है, और उसको जैसे ही देखा सभा में बैठे हुए ऋषियों ने, जैसे ही देखा महाराज परीक्षित ने, नारद और व्यास को छोड़ के सब खड़े हो गए। बच्चे और लड़कियों ने देखा कि हम समझते हैं ये पागल है, 16 साल का नौजवान है और नंगा जा रहा है, लेकिन महाराज भी उठ के खड़े हुए, ऋषि भी उठ के खड़े हो गए, वो तो वहां से भाग गए। महाराज परीक्षित ने प्रणाम किया, बोला आप जैसे सुखदेव महाराज, आप जैसे महात्मा इस वक्त ऐसे समय में यहाँ मेरे राजा के पास, जब मैं बहुत संकट में हूँ, आए हो, निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण की कृपा है, क्योंकि उसकी कृपा हमारे कुल के ऊपर सदा रही है। आज कृष्ण ने आपको हमारे ऊपर अनुग्रह करने के लिए भेजा। सबने स्वागत किया सुखदेव महाराज को। कैसे हैं सुखदेव महाराज? जन्म लेते ही कोई संस्कार करने की जरूरत नहीं पड़ी और घर से निकल के रवाने हो गए। व्यास देव बड़े पुत्र के वियोग में, विरह में कातर होके पेड़ों से पूछते हैं, कहीं आपने यहां से मेरे बेटे को जाते हुए देखा? और पेड़ कहते हैं, अरे वो तो सबको अपनी आत्मा मानता है, वो किसका बेटा हो सकता है? और जाते हुए व्यास देखता है कि एक तालाब के ऊपर स्त्रियां नगन स्नान कर रही है। आगे से सुखदेव नंगा गुजर गया, 16 साल का नौजवान, स्त्रियों उसकी तरफ देखा भी नहीं, देखा तो कोई परवाह नहीं की, वो गुजर गया। व्यास पीछे बड़ी उम्र का वस्त्र पहने हुए दादा के समान ज्यादा, स्त्री ने एकदम कपड़ा ढक लिया। व्यास को आश्चर्य लगा, बोला बेटी मेरा बेटा नंगन अवस्था में नौजवान यहां से गुजरा, उसको देख के आप ने तो कपड़ा ढका नहीं, मैं आपके दादा के समान, मुझको देखकर आपने आज वस्त्र क्यों धारण कर लिया? स्त्रियां कहती हैं, नवयुवक आपका बेटा जा रहा था, उसने पेड़ को देखा, पौधे को देखा, पहाड़ को देखा, हमको देखा, जल को देखा, उसके लिए सब समान थे, उसको स्त्री और पुरुष के भेद का पता नहीं था, इसलिए उससे हमको कोई शर्म का तो विचार भी नहीं आया, लेकिन आप गृहस्थी हैं, आपको स्त्री और पुरुष के अंदर भेद का अनुभव है, इसलिए हमने मर्यादा में आपसे कपड़ा ढका। तो ऐसा बड़ा महान त्यागी वैरागी था सुखदेव, जिसको यह भी पता नहीं था कि स्त्री और पुरुष होता क्या। ये सुखदेव तो राधा रानी का तोता है गोलोक में, जो सदा कृष्ण 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 गाता रहता है और राधा रानी को आनंद देता है। ये भागवत शंकर जी से सुन के आया था, भगवान भोलेनाथ सती को भागवत सुना रहे थे अमरनाथ में, वहां इस सुख ने भागवत सुनी थी। लेकिन तोते को अनाधिकारी जाना भागवत सुनते हुए, सती तो आंखें बंद करके समाधि में चली गई है, तोता वहां कर रहा था। शंकर जी ने कहा इसको भागवत सुनने का अधिकार किसने दिया, त्रिशूल लेके पीछे भागे। ये तोता व्यास की पत्नी के मुख से प्रवेश किया और बाहर आने को तैयार नहीं है। व्यास ने कहा बेटा तुम आ जाओ संसार में। बोला माया पकड़ लेगी, मैं नहीं आऊंगा पिताजी। नहीं नहीं माया तुम्हारा कुछ नहीं करेगी। और बेटा पूछता है क्या माया आपके अधीन है, आपके बस में है? व्यास देव को और रास्ता कोई नहीं सूझा, द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के पास गए, भगवान श्री कृष्ण को बुला के लाए। श्री कृष्ण ने कहा सुखदेव तुम आ जाओ। बोला माया? बोला मेरी माया तुम्हारा कुछ भी नहीं करेगी। भगवान श्री कृष्ण का मैं मायापति हूँ, माया देक्षेण प्रकृति सूयते से चराचरम, ये प्रकृति मेरे आदेश में चलती है, मेरी अध्यक्षता में चलती है, तुम चिंता मत करो। सुखदेव कृष्ण के आश्वासन देने के ऊपर बाहर आया और आते ही चल दिया। व्यास ने कहा मैंने ग्रस्त घर इसलिए बसाया था कि वेद शास्त्र और भागवत सिखाऊंगा, पुत्र शिष्य के समान होता है, आज मेरा पुत्र चला गया अब क्या करूं। व्यास ने अपने शिष्यों को भागवत पढ़ाया और कहा कि ये जाके वन में गाया करो। एक दिन वन में गा रहे हैं तीसरे स्कंद भागवत का उद्धव का गाया हुआ श्लोक, पूतना महान राक्षसी 6 दिन के छोटे गोपाल को मारने के लिए स्तन के ऊपर कालकूट विष लगाकर आई, लेकिन दूध पिलाने का संकल्प किया, भगवान ने विष को नहीं देखा, उसको भी धात्री गति दे दी, इससे ज्यादा और कौन दयालु हो सकता। मारने वाले को मां का स्थान दे दिया। सुखदेव गोस्वामी ब्रह्म आनंद से एकदम छटपटा के बोला ऐसा दयालु कौन है, क्या कौन सा श्लोक बोला, फिर एक बार बोलो। थोड़ी देर के लिए तो आनंद आया, फिर सुखदेव समाधि में चला गया। दूसरे दिन वहां से गुजरते हुए व्यास के शिष्य गा रहे हैं दसम स्कंद से वेणु गीत से, ब्रहापीडम नटवर वपु कर्णी उपर्णी कारकम। भगवान श्री कृष्ण जब ग्वाल बाल के वेश में वैजयंती माला पहन के बांसुरी के अंदर जब धुनी छेड़ता है ग्वाल बालों के संग में, वो उसके रूप की माधुरी को सुनकर सुखदेव गोस्वामी ब्रह्म आनंद को छोड़ के उनके पीछे भागा। और फिर स्वयं सुखदेव कहते हैं मैंने द्वापर के अंत में मेरे पिताजी से फिर भागवत सीखी, ये कहां से आप सीख के आए हो, गुरुजी से, गुरुजी को देखा तो अपने पिता को पाया। तो ऐसे सुखदेव गोस्वामी जब वहां पधारे तो परीक्षित ने उसको प्रणाम किया, उसके अपने अपने भाग की प्रशंसा की और फिर कहा कि संसार में लोग तो सब माया के जाल में फंसे हुए हैं, लेकिन मृत्यु अब मेरा प्रश्न ये है, उसके 2 भाग हैं। पहला भाग ये है कि सब लोगों का सब समय सब जगह कैसे उद्धार हो, एक कोई रास्ता बताओ सब लोग सब समय सब जगह अपना उद्धार कर सकें। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि जिसका मृत्यु बहुत निकट है उसको क्या करना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी इसका उत्तर क्या देंगे, इसके ऊपर चर्चा कल करेंगे। आज पहला स्कंद यहाँ समाप्त होता है, समय 7 से थोड़ा ऊपर जा रहा है, आपकी इच्छा है तो हम दूसरा स्कंद पूरा कर सकते हैं 15-20 मिनट में। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यहाँ पहला स्कंद समाप्त होता है 19 अध्याय और कल दूसरे स्कंद में सुखदेव महाराज बोलना शुरू करेंगे। किसी का कोई प्रश्न और जिज्ञासा है तो पूछ लीजिए, नहीं तो आरती और कीर्तन और प्रसाद 2 घंटे हो रहे हैं पूरे, 1 घंटा 59 मिनट। 1 मिनट आपके पास है कोई प्रश्न पूछना, किसी कोई जिज्ञासा है कोई प्रश्न है। हरे कृष्ण
हरे कृष्ण।